ओम शांति। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर के सुंदर प्रांगण में अरावली की सुंदर वादियों के बीच आप सभी 3 दिन से यहां उपस्थित होकर एक बहुत सुंदर विषय पर आप सभी उद्बोधन सुन रहे हैं। विषय जो प्रथम दिन से आप सभी को सुनाया जा रहा है वो ये है कि किस तरीके से समाज में अगर महिला सशक्त हो जाए तो विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत तीव्रता से संपन्न हो सकता है। इस विषय पर 3 दिन से हम आपस में रूबरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जब आप पहले दिन यहां आए थे और आज का जो दिन है, इन 3 दिनों में आपने यहां से बहुत सारे खजाने भरे होंगे जिसके आधार से आपके जीवन में एक नई सकारात्मक सोच पैदा हुई होगी, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा और अंदर से एक मोटिवेशन आया होगा कि समाज में नारी शक्ति की कितनी अहम भूमिका है। अगर नारी शक्ति जागृत हो जाए और नारी सशक्त रियल मायने में हो जाए तो स्वर्णिम भारत की स्थापना दूर नहीं है, क्योंकि नारी संस्कार की जननी है। जब हम सशक्त नारी की बात करते हैं तो बहुत सारी विचारधाराएं हमारे समाज में हैं। उस नारी को सशक्त माना गया जो अपने पांव पर खड़े होकर के अपने परिवार को एक नया आयाम दे। उस नारी को सशक्त माना गया जिसके अंदर हर परिस्थितियों को पार करने की क्षमता हो। उस नारी को सशक्त माना गया जो नारी परिवार को एकजुट करके संगठित करके परिवार को एक मिसाल बना सके समाज के अंदर, घर को मंदिर बना सके, उस नारी को सशक्त माना गया। अपितु इन 3 दिनों में जब महिला सशक्तिकरण की बात आई तो एक नया आयाम आपके सामने आया होगा। वो ये नया आयाम है कि वो नारी सशक्त है जो आत्मनिर्भर हो। आज हमारी सरकार भी आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रही है, लेकिन आवश्यकता है हम इस शब्द के अर्थ को समझें कि वास्तव में आत्मनिर्भर किसको कहा जाएगा। क्या अगर हम कैपेबल हैं सेल्फ इनकम जनरेट करने में तो हम आत्मनिर्भर हैं, या आत्मनिर्भरता की परिभाषा कुछ और है? आध्यात्मिकता ने हम सभी को इस शब्द की एक नई परिभाषा दी, एक नया आयाम दिया। चिंतन कीजिए, आज अगर हम अपने मन के अंदर झांके, मैं ये समझती हूं कि ये ज्ञान सरोवर परिसर एक शीश महल की तरह आपके जीवन में रहा होगा, जहां आपको अपने भीतर झांकने का मौका मिला होगा, जहां आपको अपने मन के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला होगा और आपने देखा होगा किस हद तक हम सशक्त हैं। प्रदीप की वो पंक्तियां याद आती हैं, तेरा मन दर्पण बन जाए। अर्थात हम सब बाहरी दुनिया में तो दौड़ लगा रहे हैं। कहा जाता है इस तौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे और सड़कों पर उजाले हैं। ये आज का संसार है, लेकिन इस परिसर में आपको वो अवसर मिला होगा जब आप अपने भीतर झांक पाए होंगे कि रियल में मेरे मन की स्थिति क्या है। रियल में अगर हम विश्व परिवर्तन की बात करते हैं, हम स्वर्णिम संसार की बात करते हैं, स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, तो हमें परिवर्तन कहाँ लाना है। सबसे पहला परिवर्तन मन में लाने की आवश्यकता है, और यहीं पर आत्मनिर्भरता ये जो शब्द है, इसका बहुत सुंदर अर्थ हमें आध्यात्मिकता ने समझाया कि हम इस समय परिस्थितियों पर निर्भर हैं, व्यक्ति पर निर्भर हैं, परिवेश पर निर्भर हैं, लोगों के कर्म और व्यवहार पर हमारी मनस्थिति निर्भर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो हाथ उठाइए। हम सब अपने मन को देखें तो हमारा मन आज परिस्थितियों पर, परिवेश पर, सामने वाले व्यक्ति के कर्म और व्यवहार पर डिपेंडेंट है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं, हमारी मनस्थिति भी चेंज हो जाती है। लेकिन सशक्त महिला वो है जो आत्मनिर्भर हो, माना जिसके मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर निर्भर ना हो, लेकिन उसके मन की स्थिति इतनी सशक्त हो जाए कि वो हर सिचुएशन को, हर चैलेंज को अपने इंटरनल पावर से फेस कर सके। और उसके वो शब्द होते हैं, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, जंग करेंगे जिंदगी के हर ले, आने दो मौत को भी सामने। ये है सशक्तिकरण का एक सुंदर आयाम जो आप सभी आत्मनिर्भर होकर यहां से लेके जा रहे हैं। आइए, अब वो समय आ चुका है जब हम इस सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस सत्र की शुरुआत करूं, अतिथिगण खुद करूंगी, मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगी। सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूं परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी से, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है और ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे बीच आज उपस्थित होने वाली हैं। मैं आदरणीय दीदी जी का इस मंच पर आवाहन करती हूँ। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी बीके शील दीदी जी, सीनियर राजयोगा टीचर जोधपुर, एग्जीक्यूटिव मेंबर वुमेन्स विंग। दीदी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आपसे अनुरोध होगा कि आप अपनी तालियों का सहयोग देते रहे। आपकी तालियां जितनी गूंजेंगी लगेगा आप उतना सशक्त होके यहाँ से जा रही हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी दीदियां मंच पर आएंगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते चलेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आज के सेशन की गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दीप माला रावत जी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ट्राइबल सेल भोपाल। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में अनुरोध होगा आदरणीय राजयोगिनी बीके गीता देवी जी से। आप सीनियर राजयोगा टीचर भीमनाल हैं, आज आप भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अनुरोध है आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के सेशन की नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिसेस श्वेता पारदर्शी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ह्यूमन एसोसिएशन लातूर एंड मिसेस महाराष्ट्र। अनुरोध है कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी जोरदार तालियों के साथ हमारी आदरणीय बहन जी का स्वागत करते रहेंगे। इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बहन मिसेस पूजा शर्मा, हेड ऑफ वुमेन मीडिया एसोसिएशन हरियाणा। मैं आपसे भी नम्र निवेदन करती हूँ कि आप मंचासीन हो, आप मंच पर उपस्थित होकर मंच को शोभायमान करें। अनुरोध होगा आगे की कड़ी में आदरणीय राजयोगिनी बीके शीला बहन जी से, एग्जीक्यूटिव मेंबर वुमेन विंग मुंबई। दीदी जी आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी सभी वरिष्ठ दीदियों का, हमारे महानुभावों का, हमारी उन बहनों का जो आज अपनी उपस्थिति से इस सेशन को चार चांद लगा रही हैं, सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी अपनी बहनों से कि वो गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत के लिए तैयार रहेंगी। इससे पूर्व हर कार्यक्रम की शुरुआत हम दो मिनट उस परमात्मा की स्मृति से करते हैं। आइए दो मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे और उस परमात्मा का इस मंच पर आवाहन करेंगे।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूं कि वो मंच की ओर आए और हमारी आदरणीय दीदियों का, हमारे मेहमानों का गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करेंगी आप। भगवान की बगिया के फूल हैं और इस जहां के कोहिनूर हैं, क्योंकि इस परिसर में आपको मिला स्वयं भगवान का वरदान है, इसलिए आप सब, आप विशेष आत्माएं, आप प्रभु पसंद आत्माएं मंचासीन हैं और हम आपका स्वागत करते हैं गुलदस्ते के द्वारा, बाज के द्वारा। अभी हमारी आदरणीय शील दीदी जी का बाज के द्वारा सम्मान हुआ, तत्पश्चात शीला दीदी जी, उनको भी बहनों ने गुलदस्ता देकर के उनका वेलकम किया और हमारे सभी मुख्य मेहमानों का वेलकम हुआ। स्वागत की ये कड़ी हम सबको अपने संस्कृति की याद दिलाती है, क्योंकि भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। और आप पधारे हैं, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जो बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, प्लीज आप आगे आ जाएं तो सभा शोभायमान दिखेगी। जो पीछे बैठे हैं, आगे की चेयर्स खाली हैं, रिक्वेस्ट होगा आप प्लीज आगे आ जाइए ताकि मंच से सामने की सभा सुसज्जित दिखे। ये आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज हमारी बहने आप आगे आ जाइए। स्वागत की कड़ी के पश्चात अभी हमारे बीच में हमारी बहन डॉक्टर विजेता आर्या, डायरेक्टर ऑफ कायाकल्प योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर, आप हमारे बीच हैं, जहां आप इस परिसर में आकर के राज योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहीं आपको फिजिकली फिट रहने की कला सिखाने के लिए हमारे बीच डॉक्टर विजेता आर्या जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपना यह सेशन लेने के लिए मंच पर आएं। प्लीज आप पीछे ना बैठें, बहने आगे आ जाइए और इधर साइड में जो है आप भी मिडिल में आ जाएं, हमें आपका ये सहयोग चाहिए। आगे आ जाएं आप सभी। तो बहन डॉक्टर विजेता आर्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप सामने आएंगी अपने योगा सेशन के लिए। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि जब कोई किसी से बिछोड़ता है तो वो वियोग है, जब अचानक मिलन होता है तो वो संयोग है, जब एक श्रेष्ठ मिलन होता है तो वो सुयोग है, जब मन और तन का सामंजस्य होता है तो वो योग है, और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो राजयोग है। लेकिन अभी फिलहाल ये तन और मन के सामंजस्यता में हमारे बीच हैं डॉक्टर विजेता आर्या जी। पहले ये कुछ आपके बीच संबोधित करेंगी और फिर 5 मिनट ये योग कराएंगी।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि. Yoga has a complete message for whole humanity. It has a message for our mind, body and soul. Human body is mere earthenware. Bake it with the flame of yoga fire. पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, रग रग में हो लहर क्रांति की, तभी जवानी पाती जय. आज हम जहां मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं, उसके बारे में बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जितना लाभ आसनों का है, उससे हजार गुना लाभ ज्यादा प्राणायाम का है, और जितना लाभ प्राणायाम का है, उससे लाख गुना लाभ ज्यादा ध्यान का है. और आप यहाँ पूरा दिन भर ध्यान सीख रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन, मन को ठीक रखने के लिए प्राणायाम, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, ये तीनों चीजों का अगर हम अच्छे से कॉम्बिनेशन कर पाए तो हम फिजिकल, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रह सकते हैं. कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम हिनारी है. औरतें ये ना सोचें कि हम तो फिजिकली तो हम वीक होते हैं, जब हमें कोई भारी काम करवाना होता है तो भाइयों को बुलाने की जरूरत ना पड़े. आज इसी मैसेज के साथ मैं आपको कुछ थोड़े से आसन सिखाना चाहती हूँ. मेरी उम्र 43 इयर्स है, दो बच्चों की मैं माँ हूँ, और आप भी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा आज से प्रैक्टिस कर दें इसके साथ साथ, राजयोगा के साथ साथ, क्योंकि ये जो योग है, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें जो लास्ट के तीन अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को ही राजयोग बोलते हैं. बाकी के जो बहिरंग अंग हैं और तीन हैं अंतरंग अंग, तो आप डायरेक्ट एंट्री पा रहे हैं राजयोग के अंदर. लेकिन उससे पहले, जैसे हम यहाँ सुबह मेडिटेशन में बैठते हैं, लेकिन किसी माता के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो बैठने में पॉसिबल नहीं हो पाता, अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो कोशिश ये करें कि आप एक घंटे, दो घंटे आसन लगा के बैठ सकें ध्यान में. मैं कल देख करके दीदी को बड़ा हैरान रही कि दीदी इतनी एज में कंटिन्यू कई कई घंटे बैठ पाती हैं. तो कहीं ना कहीं यही असली योगिनी है जो लगातार इतने घंटे तक, वरना कई लोग तो बैठे बैठे बहुत सारा पोस्चर बदलती रहती हैं, बार बार करवटें बदलते रहते हैं. ये जो बिगनर्स होते हैं मेडिटेशन के, ये बैठ नहीं पाते हैं, इनको बैठने में बड़ी दिक्कत होती है. तो थोड़ा थोड़ा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो आप बैठने के आदी हो जाएंगे. स्थिर सुखम आसनम के बाद फिर हम ध्यान समाधि में उतरेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा.
बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर विजाता आर्या जी का। सचमुच आपने अपने आसनों से और अपनी कला से ये साबित कर दिया कि कोमल नहीं, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। हम सब के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, आवश्यकता है बस उन शक्तियों से अवगत होने की, उन शक्तियों को जगाने की, जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सब के बीच स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कुमारियां जो हैदराबाद से चलकर यहाँ पहुंची हैं, आपके स्वागत में, आपके सम्मान में मैं उन कुमारियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपना वेलकम डांस प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां उन कुमारियों के लिए जो हैदराबाद से आप सबके बीच अपनी कला को लेकर के पहुंची हैं और आप सबको बताने आई हैं कि ये भी कोमल नहीं है, कमजोर नहीं है, शक्ति का दर्पण है और भगवान की वो आकृति है जिनको भगवान ने चित्रकार भी बनाया है, शिल्पकार भी बनाया है और नृत्यकार भी बनाया है। आइए आ रही हैं कुमारियां हम सबके बीच। हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी जी पहुंच चुके हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज हैं और इस ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, दीदी जी हम सबके बीच मंचासीन हो चुकी हैं, उनका स्वागत हो रहा है गुलदस्ते के द्वारा और बैच के द्वारा। आप सबसे अनुरोध होगा जोरदार तालियों के साथ एक बार खड़े होकर के हमारी दीदी जी का फिर से अभिवादन, अभिनंदन और अपना सम्मान आप सभी प्रकट करेंगे। आइए अब स्वागत नृत्य आप सबके बीच प्रस्तुत होने जा रहा है।
ओंकार पंजर शुकी उपनिषद उद्यान केली कनक अन्तर्विभावये गौरी
अभिनेत्री शर्वार्थ गात्री संघात्री जगदेक जनयित्री चंद्र प्रभादवल कीर्ति
चतुर्बाहु संरक्षित शिक्षित चतुर्भजांतर भुवन पालिनी
कुंकुम राग शोभिनी
कुसुम बाण संशोभिनी
मौन सुहासिनी गान विनोदिनी भगवती पार्वती देवी Tajam, Takajam, Takajam, Targetum, Targetum. Tajim, Tajam, Takajam, Takajam, Targetum, Targetum. Takatim, 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 Takatim,
Takatim, Takatim,
Takatim, Takatim, Takatim, Takatim, Takatim, Takatim, चलित क्षीराम्बुराति
श्रीपीठ संवर्धिनी डोलासुरमर्दिनी
श्रीपीठ संवर्धिनी डोलासुरमर्दिनी
धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी
धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी
लक्ष्मी विद्यालक्ष्मी गजलक्ष्मी संतानलक्ष्मी
सकल भोग सौभाग्यलक्ष्मी श्री महालक्ष्मी देवी
अखिलांडेश्वरी चामुंडेश्वरी पालय मां गौरी परिपालय मां गौरी
तक चनु तक धीमी तो
शौनकादि व्यास वाल्मीकि मुनि जन पूजित शुभ चरणे
सरस साहित्य सरस संगीत स्थन युगले सरस साहित्य सरस संगीत स्थन युगले वरदे अक्षर रूपिणे शारदे देवी अखिलांडेश्वरी
ब्रह्मक्रियाशालिनी
विश्वप्रिये सर्वलोकप्रिये
सर्वनामप्रिये धर्मसमरप्रिये
हे ब्रह्मचारिणे
दुष्कर्मवारिणे
हे विलंबितकेशपाशिने
महिषमर्दनशील महितगर्जनलोल भयदनर्तन केलिके कालिके
बहुत बहुत धन्यवाद इन कुमारियों का जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अभी हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारी डॉक्टर विजाता आर्या बहन को गुलदस्ता भेंट करना चाहती हैं। आपने जो बहुत सुंदर आसन दिखाया मैं डॉक्टर विजेता आर्या बहन से अनुरोध करूंगी कि आप सामने आ जाएं। हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी आपको गुलदस्ता प्रदान करेंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हमारे बीच उपस्थित हैं वो महान हस्ती जो आज के सेशन की कीनोट स्पीकर हैं, वो हैं हमारी परम आदरणीय शील देवी जी। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यक्तित्व भी है। दीदी आप दिव्य गुणों की खान हैं, शीलता आपका श्रृंगार है, दिव्यता निरहंकारिता आपका अलंकार है। मधुर मुस्कान से दीदी जी आप बनी परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। ऐसी दीदी हम सबके बीच मंचासीन है जो पिछले 52 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं और परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान जयपुर में प्राप्त हुआ, आपने राजस्थान के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं और अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बनाया है। वर्तमान समय में आप जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो अनेक सेवा केंद्र हैं, उनका आप अपनी दिव्यता शीलता निरहंकारिता और मधुरता के द्वारा दिव्य संचालन कर रही हैं। ऐसी दीदी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो अपना उद्बोधन हम सबके सामने व्यक्त करें। आदरणीय शील दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिमान परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु परमात्मा शिव की प्रिय संतान मंच पर उपस्थित आदरणीय सुदेश दीदी जी एवं अन्य सभी वक्तागण और सभा में कौन उपस्थित हैं। वेदों के अंदर हमने पढ़ा 100 विद्यार्थी के बराबर एक अध्यापक, 100 अध्यापक के बराबर एक प्राध्यापक प्रिंसिपल और 100 प्राध्यापक के बराबर एक गुरु और एक गुरु के बराबर 100 गुरु के बराबर एक माता। तो सभा में कौन उपस्थित हैं? आज की हमारी सभा में माता गुरुओं की सभा है, तो आप सभी का इस वैलिडिक्टी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। माता बच्चे की प्रथम गुरु है। नारी के बारे में, माता के बारे में बहुत सारी बातें हमने इन तीन दिनों में समझी हैं। नारी अर्थात जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, माता विशेष निर्माता है। नई रचना का कार्य ईश्वर को और माता को ही दिया गया है। तो ये माताओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माताओं को ही निर्माता कहा है। माताओं की कितनी महिमा है विशेष रूप से भारत में। इसीलिए कोई भी देश का नाम माता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भारत को भारत माता कहा गया है। अमेरिका रशिया माता कहीं भी हमने नहीं सुना। मुझे याद आ रहा है एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, उन्होंने हमारा हेडक्वार्टर विजिट किया। उस समय हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी थे। उन्होंने दादी जी से एक प्रश्न पूछा, एक बात कही, दादी भारत बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, लेकिन भारत ने किसी पर भी कभी भी आक्रमण नहीं किया है, क्यों? दादी जी ने कहा, क्योंकि भारत माता है और माता कभी भी किसी के ऊपर वार नहीं करती है, आक्रमण नहीं करती है। हमारे देश में, हमारे यहाँ नदियों का नाम भी माताओं के ऊपर ही रखा गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी। जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें तो नारी हमेशा पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। गांधी जी जब विदेश जा रहे थे तो माँ ने ही उनसे प्रतिज्ञा कराई थी, मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर जा रहे थे जहां पर इतने सारे व्यसन थे। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उसकी माँ थी। बच्चा जो है घर में हम देखें तो माँ जैसा करती है बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बच्चा तो बंदर की तरह होता है, आपने देखा होगा, माँ बेलन से रोटी बेलती है, बच्ची भी, बच्चा भी वहां आकर के खड़ा हो जाता है। तो माताओं को आज किस चीज की आवश्यकता है? हमारा भारत देश, जो आज का टॉपिक हमको दिया गया, भारत को स्वर्णिम बनाने में महिलाओं का क्या रोल है? भारत स्वर्णिम था, सोने की चिड़िया था, जिसका एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो ऐसा देश था हमारा भारत, जहां दूध घी की नदियां बहती थी, सोने चांदी के महल होते थे, शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। तो ऐसा भारत था, और आज कैसा भारत बन गया? आज के संसार की हालत को देखकर भी कवि ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो क्या बदला, क्या चीज बदली? वास्तव में जो नैतिक मूल्य थे हमारे देश में, हमारे संसार में, वो बदल गए। तो आज अगर हम फिर से इस संसार को सुख में बनाना चाहते हैं, तो फिर से नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी। इस संसार को दुख में भी हम सब ने मिलकर के ही बनाया, तो इस संसार को सुख में भी हम सबको मिलकर के ही बनाना है, और उसमें भी महिला का विशेष रोल है, क्योंकि माताओं में नैतिक गुण विशेष रूप से परमात्मा की देन है, जो उनके अंदर रहते हैं, उनके अंदर सहनशीलता, पवित्रता, दिव्यता, मधुरता, त्याग, समर्पण, ये वैल्यूज जो है माताओं को भगवान की देन है। मातृत्व भगवान की देन है। विश्व की सर्वोच्च रचना इस संसार में है तो वो नारी है, वो महिला है। तो वो नैतिक गुण जो हमारे अंदर पहले थे अब नहीं है, उसको फिर से हमको जागृत करना है, उजागर करना है। कैसे करेंगे उजागर? उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शक्ति। माताओं के अंदर हम अपने कई ऐसे वृतांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर माताएं अपने बच्चों को जो संस्कार देती हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना, बच्चा सीख लेता है। मुझे एक घटना याद आ रही है, साउथ में आपने श्रवण बेलगोल में बाहुबली जी का अगर मूर्ति देखी होगी, नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, उसका एक वृतांत याद आ रहा है। उस मूर्ति को बनाने वाले जो मूर्तिकार थे, उनके मन के अंदर लोभ आ गया कि मैं मूर्ति बनाऊंगा तो इतना सोना लूंगा, और उसने मंत्री चामुंडा राय से सौदेबाजी की, और सोने की पहली खेप लेकर जब वो घर पहुंचा और बहुत खुशी खुशी से माँ को कहा, देखो माँ मैं कितना सोना लेकर के आया हूँ, लेकिन माँ ने ऐसा उद्बोधन दिया, उसको कर्तव्य बोध कराया, और उसने कुछ भी नहीं लिया मूर्ति बनाने में। आज वो पूरे विश्व के अंदर बहुत दिव्य विशाल भव्य मूर्ति आज हमको दिखाई देती है। तो माताओं को अपने अंदर वो त्याग की भावना है, लेकिन कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण, और दूसरी बात हमारे अंदर कुछ लोभ वृत्ति, कुछ मोह वृत्ति हो गई। अभी थोड़े दिन पूर्व हमारे जो रोज के प्रवचन चलते हैं, उस प्रवचन में परमात्मा श्री बाबा ने हम बच्चों को एक बात समझाई कि भारत जो हीरों का मटका भरा हुआ था वो खाली कैसे हो गया, इतना कंगाल कैसे हो गया। उसका कारण बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, विरोध, बदले की भावना, इन भूतों के कारण, इन विकारों के कारण ही आज हमारा भारत, आज हमारा संसार इस स्थिति पर पहुंच गया कि सुख सुविधाओं के सब साधन होते हुए भी आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, घर में भरपूरता है, कोई सुख सुविधाओं के साधनों की कमी नहीं है, अगर हम किसी से पूछें तो रेस्पॉन्ड क्या मिलता है, ठीक है, चल रहे हैं, जिंदगी के दिन हैं, काटने हैं, काट रहे हैं, ये रेस्पॉन्ड मिलता है। इतना निराशाजनक उत्तर, जेल में दिन कटते हैं, अब घर में भी दिन कट रहे हैं, क्योंकि जीवन के अंदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई मिसिंग पॉइंट है, और वो मिसिंग पॉइंट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी तो हमारे विकार खत्म होंगे, बुराइयां खत्म होंगी, और बुराइयां खत्म होंगी तो सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, प्रेम, सब कुछ हमको मिलेगा। नेपोलियन ने एक बहुत सुंदर बात कही, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे अच्छी माताएं दो तो अच्छी माताएं किसको कहेंगे? अच्छी माताएं अर्थात जिनके नैतिक गुण है, जैसे कि हमारी योगा एक श्लोक हमने पढ़ ला, जल्दी सोना, जल्दी उठना। जब योगी सोते हैं तो भोगी जगते हैं, और भोगी सोते हैं तो योगी जगते हैं। ये गीता का श्लोक तो हमने पढ़ लिया, हमने गीता को तो माना लेकिन हमने गीता की नहीं मानी। बचपन में हमने किताबों में यही पढ़ा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, लेकिन आज हमारे परिवारों में स्थिति इसकी उल्टी हो गई। लोगों ने गीत बना दिया कि रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ऐसा भी एक गीत बन गया। तो हमें जल्दी उठना है, भोजन हमको सुसात्विक करना है, हमको किसी की बातों को अपने दिल और दिमाग में नहीं रखना है। जैसे हम घर में रोज सफाई करते हैं, ऐसे मन में भी हमको रोज झाड़ू लगाने हैं। अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया तो हमारी दादी जानकी जी ने हमें सिखाया लेट गो, अर्थात जाने दो, जाने दो। जिसको परमात्मा श्री बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि कोई भी बात हो जाए तो उसे जल्दी से खत्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर की सफाई तो फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अंदर 10 साल पहले की बातें भी अपने दिल और दिमाग में रख करके चलते हैं, तो हमारे मन के अंदर और आत्माओं के लिए जो वाइब्रेशन होंगे वो कितने नेगेटिव होंगे। तो फिर हमको सुख शांति कैसे मिल सकती है, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या देंगे। जब माता के अंदर ही शांति नहीं है, खुशी नहीं है, और उन्हीं हाथों से वो भोजन बना रही है, आटा बना रही है, सब्जी बना रही है, तो बच्चों के पास क्या वाइब्रेशंस जाएंगे। इसलिए माताओं को गुड मदर, अर्थात अच्छी माता कैसे बनना है, सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर ये धारणा रखें, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके सबसे पहले उस भगवान के साथ जिसका परिचय आपको मिला, जिसको हम स्नेह से श्री बाबा कहते हैं, उसके साथ गुड मॉर्निंग करें। जब भगवान के साथ गुड मॉर्निंग हो जाएगी तो गारंटी है कि सारा दिन गुड गुड होगा, आप अनुभव करके देखिएगा। कई बार हम लोग अपने जीवन में ये बातें दैनिक जीवन में कई कई बार लाते हैं, पता नहीं सुबह उठते मैंने किसका मुंह देखा, मेरा तो सारा दिन ही खराब चला गया। तो देखे ही नहीं, मन की आंखों से उस कल्याणकारी परमपिता परमात्मा श्री बाबा को देखेंगे, उससे गुड मॉर्निंग होगी तो गुड गुड होगा। रात को सोते समय मेडिटेशन करके सोएं, भोजन बनाने का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भोजन हमारा शुद्ध सात्विक सतो प्रधान हो, परमात्मा की याद में रहकर भोजन बनाएं, और अगर उसको भोग लगा देते हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। गीता में भी हमने पढ़ा कि खिलाने वाले को खिलाए बगैर जो खाता है वो चोर है, इसलिए गीता को माता कहा है, क्योंकि गीता में जो भी बातें लिखी हैं वो हमें अच्छे संस्कार देती हैं। उठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, तो ये दो तीन बातें। दूसरा, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, अभी भी हमने बहुत सुंदर देवियों की महिमा सुनी, वो देवियां वो दुर्गा काली जगदम्बा सरस्वती तीन दिन से हम सुन रहे हैं हम ही हैं। तो देवियों को आपने देखा होगा, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबको कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उनके एक एक अंग की तुलना कमल फूल से की जाती है, कमल हस्त, कमल नयन, कमल पद, कमल मुख। तो हम देखें कि हमारा जीवन कमल की तरह है, निर्लिप्त पवित्र, या कमल ककड़ी की तरह बन गया, कुछ नहीं धारणा कर सकते हैं। छोटी सी बात भी अपने जीवन में धारण कर लें। जो परमात्मा श्री बाबा हम बच्चों को एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मान से बोलो, इतनी धारणा भी परिवार में हम कर लें तो हमारे परिवार में कितनी सुख शांति हो जाएगी। लेकिन आज हम देखें तो हमारी जवान भी कैंची की तरह चलती है, जिसको जो मर्जी आया सो बोल देते हैं। इसलिए किसी ने जवान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि जवान में हड्डी नहीं है, लेकिन ये किसी की हड्डी तोड़ देती है, संबंध तोड़ देती है, परिवार तोड़ देती है। तो मीठा बोलें, कम बोलें, सम्मान से बोलें। एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई, फितरत को मंजूर नहीं थी सख्ती जवान में, कुदरत ने इसलिए नहीं दी हड्डी जवान में। इतनी सी धारणा कर लें, इस वैल्यू को भी हम धारण कर लें, तो हमारा जीवन कितना वैल्यूबल हो जाएगा। और यही संस्कार फिर बच्चों के अंदर भी चले जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि पहले हमें अपने आप को गोल्डन बनाना है। स्वर्ण भारत तब बनेगा जब माताएं पहले कंचन बनेंगी, सोना बनेंगी। सोने को में मिलावट आ जाती है, वास्तव में हम सभी सच्चा सोना है। आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, लेकिन इस संसार में जब हम आए पार्ट बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए, तो मैले हो गए, अपवित्र हो गए, हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो गई, हमारे अंदर भूत आ गए विकारों के, उसको कैसे निकालेंगे? तो सोने को से मिलावट को निकालने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान और योग की अग्नि के द्वारा हम अपने अवगुणों को निकाल सकेंगे, अपने विकारों को निकाल करके अपने अंदर सद्गुण भर सकेंगे, और वो सद्गुण हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को देंगे। व्यक्ति समाज की इकाई है, और व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन होता है। कई बार हम लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, क्या एक मेरे बदलने से संसार बदल जाएगा? इतने लोग रिश्वत लेते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, क्या मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो क्या संसार अच्छा बन जाएगा? इस विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा ने हम बच्चों को एक का महत्व बताया है। एक का बहुत महत्व है। एक लड़की शादी करके जाती है एक परिवार में, अगर उसका स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है, सारे घर को जाकर के नरक बना देती है। और एक सुलक्षणी बच्ची शादी करके जाती है तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, उसके अंदर थोड़ा झूठ कपट बेईमानी के संस्कार हैं। बड़ा होकर वो इंजीनियर बनता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का। वो रेती ज्यादा डालता है, चूना ज्यादा डालता है, सीमेंट कम डालता है, बेईमानी करता है। ट्रेन निकलती है, ब्रिज टूट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। एक व्यक्ति की बेईमानी अनेकों को दुख देती है, एक व्यक्ति की ईमानदारी अनेकों को सुख देती है। तो एक का भी बहुत बहुत महत्व है। हम बदलेंगे तो संसार जरूर बदलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बच्चा था जो बहुत चंचलता कर रहा था, अपने पिताजी को काम नहीं करने दे रहा था, उसके पिता वो टेबल वर्क कर रहे थे। उस बच्चे को कैसे बिजी करें? तो उस पिता ने देखा एक कैलेंडर, एक नक्शा पड़ा हुआ था, विश्व का नक्शा था। उसने उस विश्व के नक्शे के 50 टुकड़े कर दिए और उस बच्चे को कहा कि बेटे इसको जोड़ करके ले आओ। पिता ने पूछा कि इसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा और मैं तब तक अपना काम कर लूंगा। 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चा वो नक्शा जोड़ के ले आया। पिता ने पूछा, बेटे तुमने कैसे इतना जल्दी काम कर लिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहां अमेरिका, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां भारत, कहां लंका, कहां जापान? बच्चे ने कहा, डैडी ये तो बहुत सरल काम था। मैंने देखा कि इसके पीछे एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। मैंने क्या किया, नाक पर नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव लगा दिए और पलट करके देखा तो विश्व का नक्शा बन गया। तो एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव सारे विश्व के ऊपर पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी, स्वर्णिम भारत था और आने वाला है। ये खुशखबरी सुनाऊंगी आपको और उसकी नींव, जैसे हमारे 2 दिन में चर्चा हुई, हमारी बहनों ने आपको सुनाया, परमात्मा ने ये कार्य, विश्वनियंता ने ये कार्य नारी शक्ति के द्वारा प्रारंभ कर दिया है और आपको भी उसमें सहयोगी बनना है। अपने को अपने अंदर पहले स्वर्ग लाना है, फिर अपने परिवार में स्वर्ग लाना है, फिर समाज संसार में स्वर्ग आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। वो सपना जो गांधी जी ने देखा था, वो विश्व का बापू परमात्मा शिव आकर के साकार कर रहे हैं, और उसमें हम सबको सहयोगी बनकर उस आने वाली नई सतयुगी दुनिया में, जिसमें हर नर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी, वो पद प्राप्त करना है। तो फिर से हम यही कहेंगे कि हमारे अंदर वो सोई हुई शक्तियां हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान और योग की शक्ति से जगाकर भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है, और बापू जी का सपना परमात्मा शिव साकार कर रहे हैं, उसमें हम सबको उनकी भुजाएं बनकर, उनकी सहयोगी बनकर के इस श्रेष्ठ कर्तव्य में अपना भाग्य बनाना है। अंत में यही कहूंगी कि नारी में कितनी शक्ति है। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब धड़कती है तो सीमांत बदल देती है, धरती जब धड़कती है तो सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। नर्क को स्वर्ग, पतित को पावन, आयरन एजेड दुनिया को गोल्डन एजेड दुनिया बनाने वाली आप सभी नारियां, आपके अंदर ही दुर्गा है, काली है, राम को रचने वाली कौशल कौशल्या है, समय आवश्यकता है, माता मदालसा बन करके लोरी देने की, शुद्धो असी बुद्धो असी बच्चों को वो संस्कार देंगे तो आने वाला स्वर्णिम युग बहुत सुंदर गोल्डन युग होगा, और उसमें हम सब हर नर नारायण हर नारी लक्ष्मी होगी, ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया आने वाली है, और उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शील दीदी जी का, आपने सबके अंदर एक बहुत सुंदर जोश भरा कि नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। तो सचमुच आप वो भगवान के रतन हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता भगवान ने भरी है कि अगर आप जागृत हो जाएं तो ये इतिहास बदल जाएगा, और ये कलयुगी संसार सतयुगी संसार में बदलेगा। ये परमात्मा ने हमें विजन दिया है, क्योंकि आप देखिए एक नारी के नाम के आगे स्वतः ही देवी शब्द जुड़ता है। नारी बनी बनाई देवी है, लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे देवता शब्द नहीं जुड़ता है। अर्थात नारी अगर अपने आप में ये स्वीकार कर ले कि मैं देवी हूं, मेरे अंदर देवत्व छिपा हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर मंदिर बन जाएगा और ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि गालिब जिंदगी भर हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। जरूरत है अपने अंदर के देवत्व को जगाने की, तो हमें किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वमान में रहें, हमें सम्मान मिलेगा और ये सारा संसार स्वर्णिम बनेगा। ये प्रयास हम सभी को मिलकर करने की जरूरत है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शील दीदी जी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ हमारे मंच पर उपस्थित आज की मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ट्राइबल सेल भोपाल। यूं तो आपका परिचय बहुत ही लंबा चौड़ा है, अगर मैं आपका परिचय देने लगूं तो शायद आधा घंटा तो मुझे आपका परिचय देने में ही लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूं कि मैं शॉर्ट में आपकी कीर्तियों को सबके सामने बताना चाहती हूं। आप मनोनीत सदस्य विषय विशेषज्ञ जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश वर्ष 2022 से वर्तमान तक हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजातीय वर्ग के राष्ट्रीय पुरस्कार रानी दुर्गवती सम्मान के चयन समिति की सदस्य वर्ष 2023 से वर्तमान तक आप हैं। संसार के विभिन्न मंचों पर आपको सम्मान प्राप्त हुआ है अपनी कीर्ति, इसलिए आज आपकी कीर्ति को देखकर और आपके प्रयास को देखकर, आपकी सेवाओं को देखकर भगवान भी आपको सम्मान दे रहा है, इसलिए आज आप यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं। प्राप्त है जिनको अनेक ख्यातियां, ऐसी चैतन्य दीप हैं आप, स्वयं जागृत होकर अनेक दीपकों को जगाने का कार्य कर रही हैं आप, इसलिए ईश्वर ने दिया है दीपमाला आपका नाम, ईश्वर ने दिया है दीपमाला आपका नाम। आप पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस विषय मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनजाति नेतृत्व की चुनाव एवं संभावनाएं, इस पर आप हमारे बीच हैं। आप लेखन में भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, मैं जितनी भी महिमा करूं वो कम होगी। आइए हम सुनते हैं बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी से।
धन्यवाद। ओम शांति। सर्वप्रथम सम्माननीय मंच और मंच पर विराजमान आज के इस समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारी आदरणीय दीदी, इस आदरणीय सभागार में, गौरवमय सभागार में यहाँ पर विराजमान आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी बात यहाँ पर इस मंच से रख सकूँ। यदि विश्व परिवर्तन की बात करें और स्वर्ण युग के निर्माण की बात करें तो हमारे विषय में भी लिखा है सशक्त महिला, तो मात्र शक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसे सशक्त ही रहना है, क्योंकि कमजोर महिलाओं की कोई बात नहीं करेगा। यदि स्वर्ण युग से आशय में लगाऊं तो ये होता है कोई स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, वो स्वर्ण युग ऐसा होगा भारत देश का जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपराओं का सहज कर और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब सौंपा जाएगा और ससम्मान उसको दूसरी आने वाली पीढ़ी भी रखेगी, तभी हम स्वर्णिम युग के निर्माण में आगे बढ़ सकेंगे। जब स्वर्णिम युग के निर्माण की बात होगी तो चूंकि मैं जनजातीय समाज की प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं ट्राइबल सेल की सदस्य हूँ, तो मैं उस स्वर्णिम युग के निर्माण में बात करूंगी मध्य की उन जनजातीय महिलाओं की जिन्होंने भारत देश में ही नहीं, अपने राज्य में ही नहीं, उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भी परचम लहराया है। जब बात हम करते हैं महिलाओं की तो महिला शब्द से ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है और वो संघर्ष अलग अलग रूपों में कई तरह दिखता है। यहाँ पर उपस्थित जिन भी महिलाओं ने अपना एक क्षेत्र स्थापित किया होगा वो सभी यहाँ कुछ न कुछ संघर्ष के साथ ही पहुंची होंगी, लेकिन जब बात महिला की हो और महिला यदि आदिवासी समाज से हो तो उसका संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहती है, जिस क्षेत्र में रहती है, जिस दुर्गम क्षेत्रों से वो आती है, वहां से विश्व के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ना उसके लिए एक कठिन संघर्ष का विषय होता है और जिसमें वो आगे बढ़ रही हैं। आप मेरी इस पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं, ये है पद्मश्री भूरीबाई। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी भील समुदाय की महिला है। ये पद्मश्री का अवार्ड है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, ये जो आर्ट करती हैं, जो कला करती हैं, उसे पिथोरा आर्ट कहा जाता है और पिथोरा आर्ट जब भील समुदाय बनाता है तो वो उसे अपने पूजन स्थल पर बनाता है और देवी देवताओं के जब देव उनके शरीर में होते हैं और वो पूजन करते हैं तब ये पिथोरा आर्ट को वो उकेरते हैं, लेकिन वो केवल देव स्थान तक सीमित ना रहा और उसको दीवारों तक और बाहर कैनवास तक लाने का साहस यदि किसी ने किया है, अपनी परंपराओं से भी आगे संघर्ष करके अपनी कला, अपनी संस्कृति को यदि समाज के सामने लाने का काम किया है, तो वो ये जनजाति समुदाय की भूरीबाई जी हैं। इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कभी स्कूल न जाने वाली इस मात्र शक्ति की जो कैनवास और जो गैलरी है वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता के साथ साथ पेरिस जैसे शहरों में भी अपनी छाप छोड़ी है। ये है पद्मश्री जोधैया बाई बैगा। यदि यहाँ बैठी हुई किसी भी मातृशक्ति को या आज मेरे इस संबोधन को जो भी सुन रहा है, यदि कोई ऐसी मातृशक्ति को ऐसा लगे कि उम्र ज्यादा हो गई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये इस अधेड़ उम्र की महिला नहीं, ये 85 वर्ष की महिला आपके लिए एक प्रेरणा का काम करेगी कि 85 वर्ष की उम्र में भी वो इस तरह का काम कर सकती हैं कि विश्व परिदृश्य में अपनी एक छाप छोड़ती हैं। ये अपनी चित्रकला पारंपरिक बैगा जनजाति समुदाय मध्य प्रदेश की आदिम जाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। पूरे भारतवर्ष में कुल 75 आदिम जातियां हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। और ये बैगा समुदाय से आती हैं, मतलब जिस समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया हो, जो स्वयं विलुप्त होने के कागार पर हो, जिसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हो, वैसी अगर जनजाति समाज की महिला वैश्विक परिदृश्य पे अपनी छाप छोड़ती है और अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करती है, तो वो स्वर्णिम युग में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी बनाई हुई पेंटिंग भोपाल, दिल्ली, मिलान और पेरिस जैसे शहरों में प्रदर्शित हुई है और इन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जनजाति समाज की महिला गौंड वनोपज और लकड़ी बिनकर कभी अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और पुरखों से सीखी हुई कला को कभी नहीं छोड़ा। ये यही कारण है कि स्वर्णिम युग में ये अपना योगदान दे रही हैं। ये गौंड समाज की, जनजाति समाज की महिला है, शील कुमारी कुमरे। 5वीं तक स्कूल जाने वाली ये महिला, जिन मशीनों का हम नाम लेने में भी एक बार हमको लगता है, जैसे गैलीलियन टेलीस्कोप और न्यूटानियन टेलीस्कोप, ये उनको चलाती भी हैं, उनको संचालित भी करती हैं। उनसे पर्यटनों को, जो पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में आते हैं, वहां से आने वाले पर्यटनों को ये चौरागढ़ का मंदिर, तारे, नक्षत्रों की सैर करवाती हैं। मतलब जो कभी स्कूल अध्ययन नहीं गई वो ऐसी मशीनों को, टेक्निक की से चलाती हैं और उससे अपने नक्षत्र और अपने समाज का नाम उन तारों की तरह रोशन करती हैं और उन तारों को बताती हैं। और उसका इतना ज्ञान है इन्हें, कभी मूंगफली का ठेला लगाने वाली, रेशम फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली महिला ने मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया और आत्मनिर्भर होने वाले जो युवा हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है कि कैसे एक पर्यटन ने, जब उनके यहाँ पर दूरबीन उनको देकर गए थे उनके ससुर जी को, तो वो अपने फादर इन लॉ से उस दूरबीन को देखती रही और उसने वहां से अपना काम शुरू किया। 10 रुपए में वो पर्यटकों को ये दर्शन स्थल दिखाती थी, यहां से उसका कार्य शुरू हुआ और आज ये हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। सुश्री शारदा ठाकुर, ये भिलाला जनजाति समुदाय से आती हैं। ये 2021 में यूथ एशियन गेम्स ऑफ इंडिया की स्वर्ण पदक रही हैं मार्शल आर्ट्स में और इन्होंने अपने साहस का परिचय इस तरह से दिया कि मां नर्मदा इतने दुर्गम स्थलों से निकलती है, इन्होंने साइकिल से अकेले मां नर्मदा की पूरी परिक्रमा की है जो 70 दिनों में पूरी की है और इन्होंने बता दिया कि महिला में कितना साहस है। ऐसी के निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। अगली मातृशक्ति है पद्मश्री दुर्गा व्याम जी। ये गोंड आदिवासी महिला डिगना आर्ट करती है, जो गोंडी आर्ट होता है उसका नाम है डिगना आर्ट। 1973 में मंडला जिले में जन्मी ये जनजाति महिला कभी स्कूल नहीं गई और जब इनका बच्चा बीमार हुआ तो उसके इलाज के लिए इनका भोपाल आना हुआ। जब इनका इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने इनसे कहा कि आपके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है, ये इलाज काफी लंबा चलेगा और आपको अब भोपाल ही रुकना होगा। सड़क के किनारे झोपड़ी में रहने वाली, रहने का कार्य शुरू किया। भोपाल के बंगलों से झाड़ू पोछा का काम शुरू करते हुए इन्होंने अपनी दादी से सीखी हुई कला को कभी भी मरने नहीं दिया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपने समाज की अपनी कलाकृतियों पर काम करती रही और यही कारण है इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और इनके सम्मान और पुरस्कार की सूची आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय इनकी बनाई हुई 26 कलाकृतियों से सुशोभित है और भारत के राजभवन में भी, मध्य प्रदेश के राजभवन में भी इनकी बनाई हुई कलाकृतियों से हमारा राजभवन की दीवारें सुशोभित है। ऐसी मात्र शक्ति स्वर्णिम युग के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। शायद ये नया नाम है, आप सभी परिचित भी होंगे, मिलेट्स, मोटा अनाज। यदि स्वस्थ रहने की बात हो तो अन्न अच्छा शुद्ध होना चाहिए और इसमें मिलेट्स की एक अहम भूमिका है, मोटे अनाज की एक अहम भूमिका है। तो ये मध्य प्रदेश की बेगा, विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा समुदाय की वो मात्र शक्ति है जिन्होंने 150 तरह के दुर्लभ बीजों का बीज बैंक बना रखा है। श्री अन्न योजना में ये भारत देश और यूनिसेफ में भारत की मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पिछले 11 वर्षों से अपना सीड बैंक का निर्माण लगातार कर रही हैं और बीजों को संरक्षित कर रही हैं। इनके पास कोदो, कुटकी, सावा, काद, सिगिया, मडुआ जैसे दुर्लभ श्री अन्न की प्रजातियां उपलब्ध हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब इन किसानों को बीज देती हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं लेती। ये जब किसी किसान को बीज देती है तो वो कहती है कि इसका कोई मूल्य ले लो, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है, गरीब महिला है, तो वो कहती है कि ये अन्न दूसरे की थाली में जाएगा, वो स्वस्थ रहना चाहिए। और ये बीज बैंक यदि हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं तो हम उसको सोचते हैं कि कितने में बेच दूं, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे पास ही है, लेकिन यहाँ पर ये अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करती हैं और उस नैतिकता का परिचय देती है ये जनजाति समुदाय की, आदिवासी समुदाय की मात्र शक्ति कि हर चीजें बेची या मोल भाव नहीं किया जाता है, व्यवहार में नैतिकता का एक परिचय भी देना होता है जो जनजाति समुदाय की ये मात्र शक्ति दे रही है। और ये फ्री में किसानों को बीज उपलब्ध कराती है ताकि वो इससे और ज्यादा बीज का उत्पादन कर सके और लोगों को स्वस्थ जीवन दे, और श्री अन्न योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। जनजाति समाज किसी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना करना है उनके प्रति कि जहां असहनशीलता है उसे अपनी सोच में बदल दीजिए। ये जनजाति समुदाय सक्षम है, ये कर लेगा अपना, क्योंकि ये अपनी पीढ़ियों से सीख रहा है, इसके पास पुरखों की परंपरा का ज्ञान है। बस उसके प्रति जो आपकी हेय दृष्टि है उसे उसके गौरव दृष्टि में बदल दीजिए और वो देश के स्वर्णिम युग के निर्माण में एक अहम भूमिका का निर्माण कर लेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना इसलिए मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी। आपने अपने पीपीटीज के द्वारा उन महिलाओं की सूची प्रदर्शित की जो किस तरीके से अपने नैतिक मूल्यों को जिंदा रखते हुए समाज में अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रही हैं और साथ साथ अनुसूचित जाति का होते हुए भी कहीं भी वो अपने आप को कमजोर नहीं अनुभव कर रही हैं, लेकिन सशक्त होकर के समाज में अपने अहम योगदान दे रही हैं। उसका आपने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया और सभी को प्रेरणा भी इससे मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें हमें यही सीख देती हैं,
ये कहानी
हमारे हौसले बुलंद हो तो मंजिलों तक पहुंचना बहुत आसान है। और अगर यही हौसला हम सबके अंदर जागृत हो जाए कि हम सबको दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, तो आप देखेंगे कि जिस स्वर्णिम भारत की परिचर्चा हम कर रहे हैं वो देने वाला बन जाएंगे, उस दिन संसार स्वर्ग, हेवन और पैराडाइज बन जाएगा। आइए इसी कड़ी में हम सब के बीच आज के इस सेशन में अपने इंस्पिरेशंस देने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। आप सीनियर राजयोगा टीचर भीनमाल हैं, आप ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में बहुत कम आयु में आई। 15 वर्ष की अल्पायु में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया और आपने जो सेवाएं की है, सचमुच आपकी सेवाओं की कितनी भी महिमा की जाए वो कम होगी। आपने 9 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आपको अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग एवं स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। कार के युवा मंत्रालय के साथ G20 कार्यक्रम Y20 प्रोजेक्ट की आप विशिष्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं देती रही हैं। आप बहुत ही अच्छी वक्ता हैं। आप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण भी देती हैं, राजयोग के साथ साथ तनाव मुक्ति प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण ग्राम विकास आदि विषयों पर आप बहुत सुंदर अपना उद्बोधन देती हैं। आज आप हमारे बीच हैं। आपने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो विभिन्न सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई उसमें भी बहुत सुंदर भाग लिया है, जैसे ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग द्वारा सन 2006 में हुए स्वर्ण भारत युवा पद यात्रा की पालन किया, सन 2013 में अखिल भारत साइकिल यात्रा में भी अपना संपूर्ण योगदान आपने दिया है और इस संदर्भ में अनेका अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल रीति से बहुत सुंदर आयोजन किया। कोरोना काल में भी आपके द्वारा बहुत सारी सेवाएं हुई जिसके लिए जेनेवा की WHO की तरफ से आपको विशेष सम्मानित किया गया और जहां आप अपनी सेवाएं देती हैं वहां आप समय प्रति समय बहुत सारे हेल्थ शिविर्स ऑर्गेनाइज करती रही हैं जिससे अनेकों को लाभ मिलता रहा है। सचमुच जैसा आपका नाम है वैसा आपका व्यक्तित्व है। अभी हम सभी सुनेंगे प्रेरणादायी उद्बोधन आनीय गीता देवी जी के द्वारा जिनके जीवन में ही गीता का ज्ञान समाहित है। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गीता देवी जी।
ओम शांति। आज की सुंदर संध्या में इस समापन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रातस्मरणीय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी हम सबकी प्रेरणा स्रोत सुदेश दीदी जी, समस्त सशक्त महिलाओं का ये मंच है और आप सभी भी मातृशक्ति हमारे सामने विराजमान है, सभी को मैं नमन करती हूँ। आज 6 जुलाई और आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि का पहला दिन, ये हम सबका सौभाग्य है कि नवरात्रि के प्रथम दिन हम इतनी सारी देवियों के संग ये शुभ दिन अच्छी बातों में, पवित्र बातों में गुजार रहे हैं। और ऐसे में आज का विषय कि गोल्डन एज भारत की रचना में महिलाओं का योगदान, वैसे 2 दिन से हम ये सारी बातें सुन रहे हैं और हमें दीदी से भी बहुत सुंदर बातें सुननी है। मुझे 2-4 बातों की विशेष प्रेरणा आ रही थी जो परमात्मा से, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही हल्के रूप से। आज के भारत की समस्याओं की भी हमने बहुत सारी बातें सुनी। कई बार हमें लगता है कि समस्याओं में शायद महिलाओं का तो कोई रोल नहीं है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि भारत में हर साल 26 लाख जितनी, विश्व में 26 लाख जितनी मौतें शराब पीने के कारण होती है। उससे संबंधित रोग और उससे संबंधित एक्सीडेंट की संख्या सब मिला लें तो विश्व में 40 लाख लोग इस वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, बेमौत चले जाते हैं। ये बहुत बड़े विश्व में समस्या है, अनेक प्रकार के नशे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति जिसके घर का वातावरण बहुत प्रेममय हो, बहुत अच्छे विचारों वाला हो, क्या उस घर का व्यक्ति कभी किसी नशे का शिकार हो सकता है? आप में से कोई हाथ खड़ा करके मेरी बातों से सहमत हो तो बताएं। घर का वातावरण बनाना और वहां पर अच्छी बातों को प्रतिदिन चर्चा में लाना, ऐसा भोजन बनाना कि जिससे आंतरिक शक्तियां और शारीरिक शक्ति बनी रहे, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो नशे का कुचक्र आज की युवा पीढ़ी में है, मुझे दुख होता है कि कई बार हम देखते हैं कि आज की एडवांस कहलाने वाली महिलाएं भी सोशल ड्रिंकिंग के नाम से पार्टीज में ड्रिंक्स लेती है। ये दृश्य कोई छुपे हुए नहीं है, आप सभी टीवी फिल्मों के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं। तो महिलाओं को अगर स्वर्ग दुनिया में नहीं पहले घर में लाना है, तो अपने घर के वातावरण को बहुत सुंदर बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरा वजह है कि कोई भी व्यक्ति नशे का शिकार तभी होता है जब वो तनाव झेलता है, वो प्लेजर फील करना चाहता है, तब वो नशे का शिकार होता है। और वो तनाव के कई अधिक खर्च, आर्थिक समस्याएं, और अगर हमारी बहनें घर के खर्चे, अभी एक बहुत सुंदर बहनों ने यह नृत्य प्रस्तुत किया जिसमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐसी अष्ट लक्ष्मी का जो साउथ में गायन है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो मैं कई बार महिलाओं से कहती हूँ कि अगर आप धन लक्ष्मी बने तो आपके घर में धन का दुरुपयोग भी ना हो, और आप अपनी घर में अर्निंग जो भी मेंबर है, आपके पति है, बेटा है, आप कभी उनको ये कहिए कि मैं दाल रोटी खा लूंगी, मैं पिछले साल वाली साड़ी से दिवाली मना लूंगी, मैं कैसे भी जुगाड़ करके पुरानी ड्रेस से नया ड्रेस बना के शादी भी अटेंड कर लूंगी, मुझे लेकिन मेरे घर में अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। क्या ऐसी हिम्मत है? कौन सबसे ज्यादा धन की डिमांड करता है? कहते हैं पूरे विश्व में जितना सोना है उसमें का 12% सोना तो अकेली भारतीय महिलाओं के पास गहनों के रूप में है। तो सोचिए कि ये जो हमारी प्रतिदिन की, पति घर पे आया और हम कुछ न कुछ डिमांड लेकर तैयार होते हैं, और कुछ भी करो ये तो लाके दो, कुछ भी करो हमारे घर में ये तो होना चाहिए, अगर इस पर हम थोड़ा सा नियंत्रण करें, शादियों में कई सारे प्रसंगों में दिखावे के लिए हम अत्यधिक खर्च करते हैं कि उनके घर में इतना हुआ तो हमारे घर में इतना तो होना ही चाहिए, उनकी शादी का कार्ड इतना अच्छा छपा था तो हमारा तो होना ही चाहिए, उनके शादी में मेनू इतना अच्छा था तो हमारे घर की शादी का मेनू भी इतना अच्छा होना चाहिए, फिर भले कमाने वाले की कमर टूटती रहे और फिर वो शराब आदि कोई भी नशे की तरफ चला जाता है। आप इस पर थोड़ा सा मंथन करना। आज अंतिम दिवस से अंतिम सत्र है, प्रतिज्ञा करने का समय है, दीदी हमसे प्रतिज्ञा कराएंगे वैसे, तो ये बात भी हम अपने जेहन में रखें कि अगर मैं अपने पति की ऐसी सहभागी बनूं कि हम कम से कम खर्च में और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन गलत तरीके से आया हुआ धन मुझे साधन तो दे देगा लेकिन संस्कार मेरे घर में नहीं रहेंगे, शांति मेरे घर में नहीं रहेगी, और तब भला मैं क्या करूंगी उस घर का जिस घर में दीवारें तो बड़ी बड़ी होंगी लेकिन उस घर में सुकून की नींद नहीं होगी, अपनापन नहीं होगा, तो उस घर का हम क्या करेंगे? तो एक ये संकल्प। दूसरा, आजकल हम ये भी बहुत सुनते हैं कि चारों तरफ वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, यहां भी कल चर्चा हुई थी पैनल में, तो भारत में 1200 से ज्यादा रजिस्टर्ड वृद्धाश्रम है। कभी कभी जब मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, तब इतने अच्छे व्हाट्सएप पर सुबह से मैसेज आते हैं, ऐसे लगता है कि अगर इतने अच्छे विचार लोगों के हैं तो ये वृद्धाश्रम में किनके माता पिता है, ये समझ में नहीं आता। जब हम मानते हैं कि भारत में परिवार प्रथा कितनी अच्छे से सदा निभाती आई है, बल्कि हम तो विश्व को भी परिवार मानते हैं। और वहां हम अपने परिवार में साथ रहना ये आज की नई पीढ़ी में संस्कारों में क्यों नहीं डाल पाते हैं। कल एक डिस्कशन में किसी बहन ने कहा था कि जो हमारे घर की सास है उनका रोल ज्यादा होता है, उनको समझना चाहिए, उनको डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मैं सुन रही थी तो मुझे एक विचार आया कि आज 2024 में इस सभा में बैठे हुए कितने लोगों के पास कीपैड वाला छोटा वाला फोन है? है किसी के पास? है किसी के पास? सबके पास कौन सा फोन है? स्मार्टफोन है। ठीक है, तो आप सभी का युग है स्मार्टफोन का युग। और आपकी जो घर के जो बुजुर्ग है ना, उनका जो समय था ना, वो कीपैड वाले फोन का समय था। तो हो सकता है कि वो किसी पुरानी बातों को मन से न निकाल पाए और इसलिए घर में कभी क्लेश होता हो, लेकिन जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनको तो पता है कि डिलीट ऑल भी हो सकता है केवल एक क्लिक करने से। तो आप ही डिलीट कर दीजिए, क्यों इंतजार करते हैं कीपैड वालों से? आप तो स्मार्ट है और स्मार्टफोन वाले हैं। तो घरेलू बातें जिसमें हम सभी को, मुझे आदरणीय पूर्व प्रशासिका हमारे दादी प्रकाशमणि जी की एक बात याद आती है, जब ये हारमोनी हॉल जहां आप बैठे हैं इसका जब उद्घाटन हुआ था, वो हमारे संस्था के द्वारा हारमोनी ईयर मनाया गया था। और दादी जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की थी कि आपके घर परिवार में हारमोनी तभी आएगी जब कोई भी बात हो जाए, बस प्रेम से सिर झुका के कह दीजिए हार मानी। इतना सही तो कहना है। आजकल वैसे भी आप देखिए हमारे कई घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए बीतते हैं। और आप जब देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब अपने सोशल मीडिया पे होता है तो उसकी पोस्चर क्या होती है, पोस्चर क्या होता है, क्या वो ऐसे तना हुआ होता है, कैसा होता है वो? उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। और इंडिया में कहा गया है कि आजकल एवरेज 5 घंटे लोग कोई ना कोई स्क्रीन पर बिता रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो या स्मार्टफोन का। तो अगर दिन के 3-4 घंटे ही सही, 2 घंटे ही सही, पे गर्दन को हम झुका सकते हैं, वो भी इसलिए कि अननोन रिश्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हैप्पी मदर्स डे या शादी कहने में, जिनको कि हम जानते भी नहीं होते हैं, अगर वहां हमारी गर्दन झुक सकती है तो थोड़ी सी घर में ही, संबंधों में ही झुक जाए तो क्या बुरी बात होगी। हारमोनी होगी तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। एक और बात जो मुझे कहनी है कि सतयुग कैसे था, जहां समानता थी, जहां प्रसन्नता थी, हम देवी देवताओं के चेहरे पर देखते हैं कितने प्रसन्न थे वो। अगर कोई मूर्ति बनाने वाला गलती से ना दे, जिसमें थोड़ा सा वो देवी देवता की झलक, स्माइलिंग ना लग रही हो, तो हम कहते हैं कि ये मूर्ति इसने ठीक बनाई, क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि सतयुग में जो थे, स्वर्ग में जो थे, वो हमेशा मुस्कुराते थे। लेकिन हम सभी सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? तो ये भी यहां से हम संकल्प लेकर जाएं कि हम मुस्कान के साथ हर काम करेंगे। चाहे आपने खाना बना लिया हो, सब कुछ पूरा हो गया हो, उसके बाद कोई 5-6 मेहमान आ जाए और आपको दोबारा आटा गूंदना पड़े, 47 डिग्री टेम्परेचर हो और आपको किचन में जाना पड़े, तब भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा दिल से बोलिए, जोमेटो से ऑर्डर नहीं करेंगे, रोटी बनाएंगे। क्योंकि धान्य लक्ष्मी भी आपका ही नाम है, और धान्य लक्ष्मी वही होती है जो अपने परिवार जनों को अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खिलाएं। आपके घर में भगवान की फोटो या मूर्ति या मंदिर तो होगा, होगा, उसको आप भोग भी तो कभी धरते होंगे। उस घर में ही भगवान को भोग लग सकता है जिस घर में महिला, घर की माता, घर की बेटी या उस घर की जो भी जिम्मेवार है, वो अपने हाथों से बनाए। मुझे एक लड़की ने, क्योंकि काउंसलिंग में मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरी शादी होते होते रुक जाती है, तो मैंने कहा कोई कारण होगा, तो उसने कहा 10 बार मेरा रिजेक्शन हो गया। मैंने कहा कारण क्या है, बोली मेरी एक शर्त है उसका पालन नहीं करते ससुराल वाले। मैंने कहा ऐसी कौन सी शर्त है, तो शर्त यह है कि मैं शादी करूंगी लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये आज की एक नई पीढ़ी की बीमारी है या क्या कहें, हमको ये लगता है कि कम से कम वीकेंड में तो हमको होटल में ही खाना है, लेकिन आप जो होटल में खाते हैं, आप जो बाजार से मिठाई लाते हैं, उसमें क्या वाइब्रेशन होते हैं आप जानते तक नहीं है कि उसको किसने और कैसे और कब बनाया है, और उन भोजन को खिला के आपका और आपके बच्चों का बॉन्डिंग कैसे मजबूत होगा, या आपको भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग भगवान कैसे स्वीकार करेगा जिसमें भावना ही नहीं होगी। भगवान की थाली से कुछ कम नहीं होता है, लेकिन वो भोग के अंदर से भगवान क्या स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, आपकी भावना। तो जिस घर में भगवान को भोग लगेगा वो घर भी स्वर्ग होगा, और वहां देवी देवताएं और ईश्वर जरूर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। इसलिए ये भी हम इस जगह से, आपको यहाँ का भोजन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और परोसने वाले प्यार से परोसते हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी पेड वर्कर नहीं है, बड़े प्यार से सभी लोग भगवान का भोग है, बाबा का भंडारा है, बाबा के भंडारे की सेवा है, और हरेक को परिवार समझते हुए खिलाते बनाते। आप भी अपने घर में यही सब कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे दीदी ने कहा, हम सुबह उठ के रोज अपने तन को स्वच्छ करते, अपने आंगन को स्वच्छ करते हैं, लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना, वो दिन कौन सा था जिस दिन आपने अपने मन को स्वच्छ कर दिया था, पिछली सारी बातों को आप भूल गए थे। हम कितने सालों की बातें, कड़वी यादें ले लेके, गांठे बांध कर, पोटलियां बांध कर, बक्से भर भर के घर में रखते हैं, मन में रखते हैं, और फिर हम कहते हैं उदास हूं, नींद की गोली लेनी पड़ रही है, टेंशन में हूं। वजह एक ही है कि पुरानी बातों को जमा करके रखा है। और इसलिए आज हम सबको ये भी यहाँ से संकल्प लेना चाहिए, मैं एक ही लाइन में कहूंगी, अगर करना है मन को साफ, अगर करना है मन को साफ तो कर दीजिए सबको माफ। सिंपल सी बात है। क्षमा को कहा गया है वीरस्य भूषणम्। सशक्त महिला वो नहीं है कि जरा सी उसकी बात न मानी जाए तो वो कोर्ट में चली जाए, जरा सी उसकी बात नहीं मानी जाए तो घर में झगड़ा कर ले, सारे घर को अशांत कर दे, वो कहे कि मैं आवाज उठाना जानती हूँ, वो महिला सशक्त नहीं है। लेकिन जो क्षमा करके, क्षमा की देवी बनके और अपना परिवर्तन करके अगले को बदल देती है, वो देवी है। इसीलिए लास्ट में मैं 4 लाइन कहूंगी, किसी ने कहा है बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता, घर बदलना है संसार की सूरत, घर बदलना है संसार की सूरत तो इतना याद रखना कि गंदे नीर से चीर को कभी धोया नहीं जाता। स्वयं को बदले, यही यहाँ का संदेश है। और स्वर्णिम युग कुछ और नहीं है, स्वर्णिम युग एक ही है जहाँ हरेक के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। और हम सब ये संकल्प लें कि फिर कभी 4-4 बार नवरात्रि का पूजन होने वाले देश में कोई महिला गर्भपात इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि उसके गर्भ में पलने वाला शिशु एक बेटी है। जिस देश में नदियों की, धरती की माँ कह के पूजा होती है, देवियों का घर घर में गायन है, उस घर में कोई और निर्भया का कांड नहीं होगा और हम न होने देंगे। ये हम सबको जरूर आज यहाँ से संकल्प लेना है। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का, आपने बहुत सुंदर संकल्प हम सभी को दिए जो हम जरूर यहां से पक्का करके जाएंगे। और हम ये ध्यान रखें कि जीवन में जितना धन का महत्व है उतना और उससे कई गुना ज्यादा दुआओं का महत्व है। किसी ने कहा है
जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है, जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है, और जब मिल जाए सद्गुण का साथ, हमारे गीता दीदी जैसे व्यक्तित्व का साथ, तो बात खुदा से होती है। तो सचमुच आपने हमें सिखाया कि धन घर में आता है तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वो धन किसी की बद्दुआ लेकर ना आए, अनैतिक तरीके से ना आए, क्योंकि अगर अनैतिक तरीके से धन आएगा तो वो ना आपको सेहत देगा, ना शांति देगा, ना खुशी देगा। इसलिए आप सब महिलाएं अगर ये लक्ष्य रखेंगी जीवन में कि हमें दुआएं कमाना है, तो सचमुच आपका जीवन खुशहाल होगा और चेहरे पर 24/7 मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो बहुत सुंदर संदेश था हमारी गीता दीदी जी का। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं आज की हमारी नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस श्वेता परदेशी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ह्यूमन एसोसिएशन लातूर एंड मिसेस महाराष्ट्र। आप मिसेस महाराष्ट्र 2022 की विनर रही हैं, आप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2022 विनर क्राउन होल्डर रही हैं, आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम अंकित है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिवा छत्रपति महाराष्ट्र रत्न अवार्ड में कितने अवार्ड का नाम दूं जिससे आपको नवाजा गया है, कांटों के बीच खिलने वाली गुलाब हैं आप, स्थूल ताज से सुशोभित हैं आप, लेकिन बनाना था भगवान को सिरताज आपको, इसलिए मंच पर शोभायमान हैं आप, मंच पर शोभायमान हैं आप। तो आइए हम सुनते हैं हमारी बहन मिसेज श्वेता पारदर्शी जी से।
ओम शांति। विश्व परिवर्तन की न्यू सशक्त महिला राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राज्यों शिविर के स्टेज पर के गणमान्य अतिथि और परम आदरणीय राजयोग बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साथ साथ मैं सर्वशक्तिदाता शिव परमात्मा को भी वंदन करती हूँ। मैं अपने बारे में, खुद के बारे में बताने से पहले मेरे बाबा, मेरे परमात्मा शिव शक्ति के उस अनमोल अनुभव के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मेरा अनुभव बहुत बड़ा है। मैं एक साधारण महिला थी, बहुत ही छोटे गांव से, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और उसे पूरा करने के लिए मैंने एक अहम कदम उठाया था। मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव बाबा ने मुझे बहुत आगे और बहुत ऊंचा पहुंचाया है। आपको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरा अनुभव। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, वर्क आर्टिस्ट हूँ। मेरी एक एकेडमी है लातूर में। मैं इतने पवित्र और वैष्णवी स्टेज पर पहुंचाने के लिए मैं लातूर की सेंटर नंदा दीदी, माताजी सुषमा माताजी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनकी वजह से मैं इतने बड़े पवित्र और वैष्णवी स्टेज तक पहुंच गई। उनको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं ऑल इंडिया ब्यूटी सलून लातूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ह्यूमन राइट्स की भी लातूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ। मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। यहाँ पे आपको सबको लगेगा यहाँ मैं ज्यादा हो रहा है, लेकिन सही बात है कि मैं के पहले मेरे परमात्मा ने मुझे यहाँ तक इतना ऊंची स्थिर पर पहुंचाया है वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ऐसे कई इवेंट शो की विनर हूँ, 7 क्राउन होल्डर हूँ। मेरा बेबी 1 मंथ का था तब मैं मिसेस महाराष्ट्र बनी थी। मेरा बेबी 2 मंथ का था मिसेस इंडिया बनी। मेरा बेबी 3 मंथ का था मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर बनी। आप माताएं बहने सोच सकती हैं, मेरा 1 मंथ का बेबी और मेट्रो सिटी में जाना और मेरा 2nd सीजरिंग हुआ था। आप सोच सकते हैं 6 मंथ का बेड रेस्ट रहता है, लेकिन मुझे कुछ करना था, कुछ बनना था, खुद का अस्तित्व निर्माण करना था। मुझे वही समय था जब मैं मायके गई थी, ससुराल में तो ये मुमकिन नहीं था, पहले किसी का सपोर्ट नहीं था। मेट्रो सिटी में जाना, बच्चे को 1 मंथ के बेबी को लेके जाना, वहां कोई पहचान वाला भी नहीं था। और मॉडलिंग क्षेत्र ऐसा है, छोटे कपड़े पहनना, ग्लैमर दिखाना। उसी वजह से मॉडलिंग क्षेत्र को और ब्यूटिशियन को क्षेत्र को देखने का सबका नजरिया बहुत अलग है। और उसे मिटाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया था। मैं जब मेट्रो सिटी में जाती थी, मैं फुल कपड़े पहन के जाती थी, सब कहते थे ये क्या बहन जी बन के आई है, इसे कौन मॉडल कहेगा। कोई बात करने को तैयार भी नहीं था वहां जाने के बाद, लेकिन मैंने अपनी भारतीय संस्कृति को साथ लेके वो सारे जीत हासिल किए हैं। और 200-300 महिलाओं को, लड़कियों को पीछे छोड़ के जो ग्लैमर और छोटे कपड़े पहनती थी, उनको मैंने ये साबित कर दिखाया कि छोटे कपड़े या ग्लैमर दिखा के जीत हासिल नहीं की जाती। हम अपने भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाके भी और परमात्मा की शक्ति से हम कोई भी काम या कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। वो जब बात नहीं करते थे, जब मैंने उनको जवाब अपने विनर वॉक से दिया था, मेरा बेबी साइड में सोता था, उसे कोई लेने के लिए नहीं था, 1 मंथ की बेबी था, फीड करने को भी नहीं आता था। 1 वॉक करना, उसके पास जाना, दूसरा वॉक करना, उसको सुलाना, उसको सुलाते सुलाते, उसको ख्याल रखते रखते मैंने बहुत सारे स्ट्रगल करते उनको दिखाया है कि कौन कहता है शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद हम अपने सपने या ख्वाब पूरा कर नहीं सकते। अगर मन में लगन और जिद है तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी कर सकते हैं। चारित्र्य का बल और परमात्मा का आशीर्वाद इतना बड़ा है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। जब मुझे पूछा गया आपके साथ कौन आया है, पूछते हैं विनर होने के बाद, तो मैंने कहा सिर्फ 1 मंथ का बेबी है। तब सबको लगा ये क्या बोल रही है, तो मैंने दिखाया और उस बच्चे के साथ मैंने क्राउन पहन के विनर का वॉक किया था। ये मेरे हृदय के लिए बहुत आनंददायी समय था, लेकिन शारीरिक के लिए बहुत कष्टदायी था। सब कहते थे तू मत कर, ये तेरा टाइम नहीं है, क्यों कर रही है, अपने करियर के लिए खुद के बच्चों को इतना तकलीफ दे रही है। मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चों को तकलीफ कैसी होती, मुझे जितनी तकलीफ हो जाए होने दे, लेकिन मैं मेरे बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ बिना दिए मैंने बहुत सारा अचीव किया है। मैं इतना बताना चाहती हूँ इस मंच पे कि मेरे जैसे और सारी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ करें, एक कदम उठाने की जरूरत है परमात्मा के साथ। परमात्मा सब करता है। मैं जब भी डरती थी या डगमगाती थी तो मन में ओम शांति शिव बाबा आप देख लेना और मेरा काम हो जाता था। मैं इस इतने सारे विनर टाइटल जीतने के बाद ये टाइटल को आगे लेके जाने के लिए मैं आज मेट्रो सिटी में नेशनल इंटरनेशनल शो जज करती हूँ। कभी वो स्टेज पे मैं पार्टिसिपेंट थी, आज मैं वो शो जज करती हूँ। पहले पति का साथ नहीं था, अभी मेरे पति मेरे हर दम ढाल के जैसे मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने देखा कि मैंने मॉडलिंग क्षेत्र में जाके भी अपनी मर्यादा संस्कृति के साथ इतना बड़ा जीत हासिल किया है। आज भी वो मेरे सभा में है। पहले वो कहते थे हम अच्छे घर के हैं, आप मॉडलिंग मत करो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं कुछ गलत करूं तो वहां पे आप मुझे बोलिए। उन्होंने एक मौका दिया था, उसको मैंने इतनी बड़ी जीत में शामिल किया। मेरे एक एकेडमी कहा मैंने लातूर में, मैं 7 कोर्स लेती हूँ। अनाथ विधवा गोर गरीब महिला जो रहती है उनके मन में कुछ ना कुछ करने की क्षमता है, लेकिन किसी के प्रॉब्लम या मनी की वजह से वो नहीं कर सकती। ऐसे गोर गरीब जो विधवा महिला है उनको मैं सभी प्रकार के कोर्स फ्री में सिखाती हूँ और महिला सबलीकरण भी करती हूँ। जो महिलाएं 30 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकती थी, आज 3,000 की वस्तु अपने स्व खर्च से खरीद के मुझे फोन करके करती है, कहते हैं कि मैडम ये आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। और मैं कहती हूँ मेरे बाबा की वजह से ये मैं कर सकती हूँ। एक महिला क्या क्या कर सकती है, एकेडमी चलाती है, घर का पूरा काम भी करती है। मेरा छोटा सा घर है, उसके साइड में मैंने खुली जगह रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा खेती है वैसी भी मेरी छोटी सी खेती है। उस खेती में मैं काम करती हूँ, चूल्हे पे खाना भी बनाती हूँ, इधर इंटरनेशनल शो जज करती हूँ और घर पे आने के बाद गाय भैंस का दूध भी निकालती हूँ। मेरा स्ट्रगल और मेरी मेहनत देख के मुझे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया, जैसे कि दादा साहेब फाड़के, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत भूषण, शिव छत्रपति, महाराष्ट्र रत्न, हिरकणी, शिवकन्या, स्त्री कर्तृत्व, आदिशक्ति, ये 175 अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये सिर्फ एक साल में, किसी मैजिकल से कम है। ये कब होता है, जब अपना परमात्मा अपने साथ होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले माइक पकड़ना, स्टेज पे जाना, पूरा बॉडी घबरा जाती थी। अभी परमात्मा का नाम लूं, सब डर खत्म, सब खत्म, सब अच्छा हो रहा था। जब मुझे नेशनल इंटरनेशनल जजिंग के लिए बुलाते हैं तो मेरा पहला सवाल रहता है, मैं आपकी ड्रेसिंग नहीं पहनूंगी। आपको बुलाना है तो मैं अपने फुल ड्रेसिंग में आऊंगी, आपको मंजूर है तो हाँ, नहीं तो ओके। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मॉडलिंग को और मॉडलिंग क्षेत्र ऐसा है, वहां ग्लैमर और छोटे कपड़े पहन के ही जीत हासिल करे या कुछ कर सके, ये गलत है, सोच ही गलत है। मैंने वो कर दिखाया है। क्यों फुलकप्पे भारतीय संस्कृति के साथ क्यों नहीं जीत सकते? मैंने किया है, सेवन क्राउन होल्डर हूं, एक साल में 700 जीत सकती हूं, जज भी कर सकती हूं, तो आप हम क्यों नहीं, क्यों अपना ग्लैमर दिखाएं? मैंने आज तक कभी कटआउट स्लीवलेस नहीं डाला है। मेरा मानना है कि हमारी सोच और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो कुछ भी मुमकिन होता है। एक मंद का बेबी को लेके विनर तो हो गई, लेकिन मैं एक ब्यूटिशियन हूं ना, तो मेकअप कंपटीशन भी रहते थे, तो मैंने अपने एक मंथ के बेबी को पेट को बांध के मेकअप कंपटीशन में उतरा था। सब कहते थे झांसी की रानी को देखा था पेट को बांध के युद्ध करते, आज पहली बार देख रहे कि अपने बेबी को पेट को बांध के मेकअप कर रही है, और उसी में भी मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। सब कहते थे ना कि तू मत कर, क्यों कर रही है, अभी वही लोग बोलते हैं तूने बहुत अच्छा किया, हमारे प्रोग्राम में कब आ रहे हैं, पहले बोलते थे क्यों कर रही है। मुझे तब लगता था मैं गलत नहीं हूं, क्यों गलत क्यों नहीं हूं, मॉडलिंग का क्षेत्र जो मैं गलत कब रहती जब उनके साथ मेरा भी बिहेवियर ऐसा रहता। मैं कुछ चेंज नया कुछ किया और उसे यशस्वी भी बनाया। एक नारी एक बाबा की बेटी इतना कुछ कर सकती है तो हम आप क्यों नहीं। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी जैसी और महिलाएं बने, अपने अपने क्षेत्र में काम करें और कुछ अपना सबलीकरण करें। परमात्मा की इस पावन भूमि को मैं वंदन करती हूं। मैं असम ऊर्जा लेकर यहां से जाऊंगी और अपने इस कार्य में चार चांद लगाऊंगी। आप जैसी शिव शक्तियों और स्वयं शिव परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो, इस शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन मिसेस श्वेता परदेशी जी, आपने अपने अनुभवों से सभी के अंदर एक सुंदर प्रेरणा जरूर जागृत की है कि अगर हमारे अंदर परमात्म बल है, चरित्र का बल है, तो किसी भी मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। माथे पर तिलक और सिर पर ताज, वाणी में परमात्म बल और चरित्र की खान, ऐसी है हमारी बहन श्वेता जिनकी अद्भुत है पहचान। जोरदार तालियां इनके लिए। और आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव साझा किया। मैं आपके हस्बैंड से अनुरोध करूंगी कि आप एक बार सामने आ जाएं ताकि सब आपको देखें कि किस तरीके से आपके आगे बढ़ने में आप एक बैकग्राउंड की तरह रहे, और अभी आपका फुल सपोर्ट है और आपकी वजह से ये आगे बढ़कर इतना कुछ कर रही हैं। शुरू में तो इनका ही हिम्मत और उत्साह रहा और फिर धीरे धीरे आपका भी साथ मिला इनको, और आज आप साथ दे रहे हैं, ये इनकी सफलता का सुंदर राज है। तो एक बार सामने आ जाएंगे, सभी इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अभी हमारे बीच हमारी नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर बहन मिसेस पूजा शर्मा जी, हेड ऑफ वुमेन मीडिया एसोसिएशन हरियाणा, आप मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आज आप भी अपने प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबके बीच व्यक्त करेंगी। आप लगभग 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, होप एंड हेल्थ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, जिसमें छोटी छोटी एनजीओ को सपोर्ट का आर्थिक मदद दिलवाने का कार्य करती हैं, हरियाणा की पहली महिला पत्रकार एसोसिएशन की प्रधान हैं और अपनी प्रखर और दबंग पत्रकारिता के लिए शहर में अपना अलग मुकाम आप हासिल किए हुए हैं और आज हमारे बीच हैं। हम आपका पुनः बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपना उद्बोधन हम सबके बीच रखें। बहन पूजा शर्मा जी।
ओम शांति। आज आबू की इस पवित्र धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला पूरे विश्व को एक नई सोच, एक नई आध्यात्मिक जीवन शैली देने का जो बीड़ा उठाया है और आज शुरुआत हुई है, आज समापन सत्र में है। यहाँ मैं सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा को नमन करती हूँ। साथ ही इतनी विभूतियां यहाँ पर राजयोगिनी बैठी हैं, उनके आगे कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। और बहुत कुछ सुना महिलाओं को लेकर और 3 दिन का सत्र, और सच मानिए कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रिजॉर्ट्स जाते हैं, सेंटर्स जाते हैं, लेकिन मन को डिटॉक्स कैसे किया जाता है वो मैं पहली बार यहाँ माउंट आबू आई हूँ और मैंने ये आत्मसात किया यहाँ पर और मैंने सीखा कि मन जो है डिटॉक्स होना कितना जरूरी है। स्वर्णिम भारत में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर तो मैं जरूर 2 शब्द कहूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सबने अपनी जर्नी बताई है और जब सशक्त महिला की जर्नी की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही मध्यम वर्ग से आती हूं और आज से लगभग 25 साल पहले मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की और उस वक्त पत्रकारिता के क्षेत्र को महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि एक लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है, पुरुष प्रधान समाज है हम कहते हैं और इसको मैंने महसूस किया है और आज भी कई बार महसूस करते हैं, लेकिन मैं डरी नहीं, मैं आगे बढ़ती रही। और इसमें जब मंच मिला है और उन लोगों को धन्यवाद ना किया जाए जिनकी वजह से आज यहाँ पर पहुंची हूँ, तो सबसे पहले मैं परमात्मा का जो है धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई। इसके अलावा मेरे माता पिता, मेरे परिजन जिन्होंने सहयोग किया, लोगों की बातों में नहीं आए और मुझे इस दिशा में समाज से जो जितनी भी चुनौतियां थी उनको पार करने में मेरे स्तंभ बने, वो मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे मेंटर्स जिन्होंने हमेशा सोचा कि मैं 100% अच्छा कर सकती हूँ और अगर मैं 99% अच्छा कर रही हूँ तो वो 1% जो नहीं कर पा रही हूँ वो भी मैं करने का मादा रखती हूँ, तो उनकी उस प्रेरणा की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा अक्सर जाना होता है, मैं हरियाणा के फरीदाबाद से आती हूँ और वहाँ ब्रह्मा कुमारीज के काफी सेंटर हैं। यहाँ बहन पूजा दीदी के माध्यम से मैं यहाँ पर आई तो वहाँ कई बार कवरेज के लिए हमें सेंटर्स जाना होता था और पत्रकारिता का काम ऐसा होता है कि रोज आपको बहुत ज्यादा तनाव झेलना पड़ता है, आपको परिवार के साथ और काम के साथ मैनेजमेंट बिठाने में बहुत तनाव होता है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर राजनीति हो रही है, बहुत इतना तनाव था। एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई और वहां पर मैंने देखा कि जितनी भी बहनें थी इतनी सहज और सरल थी, ऐसा लग रहा था कि शायद कलयुग में नहीं हम सतयुग में जी रहे हैं और उन्हें किसी तरह का कोई तनाव ही नहीं है। तो जो लोग वहां पर थे, कुछ लोग थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने जानना चाहा कि ये ऐसे कैसे कर लेती हैं, आजकल तो जरा सा कुछ हो जाता है और माथे पर बल लोगों के पड़ जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि अध्यात्म की राह पर कितनी सात्विकता के साथ वो लोग रहते हैं तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो जब भी मुझे तनाव होता था तो मैं वहाँ नजदीक का जो सेंटर था, वहाँ मुन्नी दीदी बहन थी, तो मैं उनको कहती थी कि दीदी मैं खाना खाने आ जाया करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतनी सात्विकता के साथ और पवित्रता के साथ बनाते हैं तो शायद वो तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैं जब जब वहां पर जाती हूं तो मैं चाहे घर से ब्रेकफास्ट लंच करके जाऊं, लेकिन मैं वहां का अन्न और जल जरूर ग्रहण करती हूं। और मुझे यूं लगता है कि मेरा जो है जितना भी तनाव था वो उस अन्न के साथ उस सकारात्मकता को अपने अंदर ले आया। और कोविड के समय में जैसा सब लोग आप लोग जानते हैं बहुत संघर्ष का समय था, और महिलाओं की बात हो रही है तो मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा कि महिलाएं न केवल घर संभाल रही थी, कामकाज संभाल रही थी, बीमार लोग घर में थे उनको संभाल रही थी और खुद भी बीमार थी। तो स्वर्णिम भारत में महिलाओं के योगदान की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि सशक्त महिला के साथ सेहतमंद सशक्त महिला अगर हम कहेंगे तो शायद ये ज्यादा सार्थक होगा और हम जल्दी स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने लगेंगे। आज हम उस देश में हैं जहां 50% आबादी महिलाओं की है, आज चांद तक पहुंचने में महिलाओं का योगदान है, आज घर का बजट भी महिला बनाती है और देश का बजट भी महिला निर्धारित करती है, तो हम सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस करती हैं। लेकिन इन सबके बीच में मैं एक अनुभव आपसे साझा करना चाह रही हूं कि हम मैंने महिलाओं के दो रूप देखे हैं। एक महिला वो है जो सहनशील है, जो धैर्य रखती है, जो सारा दिन अपने हस्बैंड के लिए अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, भागदौड़ करती है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो उसको पता लगता है कि आटा खत्म हो गया है तो वो सोचती है कि चलो आज दूध पीकर रह जाते हैं। वो अपने लिए कुछ भी करने से पहले परिवार के बारे में सोचती है। तो हम उस देश में उस जगह पर रहते हैं जहां महिलाएं अपने से पहले अपने परिवार को रखती हैं। तो वहीं एक चेहरा जो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो भी चेहरा एक महिलाओं का है। जैसे दीदी ने बताया कि व्यसन भी बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर आ रहे हैं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर की रीस करते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं जो हम स्वर्णिम भारत की नींव की बात करते हैं, उस नींव को हिलाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे आगे है। देखिए दीदी ने जैसे बताया था अपने वक्तव्य में कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। मैं एक बार शिवानी दीदी का इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझे दो बात मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताई, तो वो मैंने आत्मसात की। और शायद बहुत लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि बच्चों का सेशन था, स्कूली बच्चे थे, तो पेरेंट्स की ये कंप्लेन थी कि बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे बहुत शरारती हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी थे, संस्कार आपने नहीं दिए। जब बच्चों को संस्कार देने की बात थी तो आप अपनी दुनियादारी में लगे हुए थे, तो बच्चों से आज आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी गलतियों को दूसरे पर डालने की बजाय हम आत्ममंथन करें। साथ ही साथ एक चीज और उन्होंने कही थी, सकारात्मक विचारों की बात, क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमारी को सुनते हैं तो वाइब्रेशंस की बहुत ज्यादा बात होती है और ऐसा मानते भी हैं, वही चाय होती है, वही उसमें दूध चीनी पत्ती डलती है, लेकिन कई बार वो बहुत अच्छी बनती है और कई बार लोग कहते हैं कभी काढ़ा बना दिया या कभी कुछ बना दिया, तो वो वाइब्रेशंस जो है वो काम करती हैं। तो शिवानी दीदी से मैंने पूछा कि दीदी ये इतना कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है और परमात्मा तो नेगेटिव सोचता नहीं है, तो आप ये सोच के उनके माइंड में ये थॉट क्यों दे रहे हो। तो हमें कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। और महिलाएं जो सशक्त भारत में अपना योगदान निभा सकती हैं, मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है जब हम हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। और जब नारी की बात होती है तो उन्हें शक्ति कहा जाता है और शक्ति का मतलब होता है पावर, शक्ति का मतलब होता है स्ट्रेंथ। लेकिन ये स्ट्रेंथ कहाँ से आए, आज मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद हैं, आज सेशन भी हुए अलग अलग टॉपिक्स पर, बहुत सारे मन में सवाल, बहुत सारे मन की उलझने लेकर यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी, पुरुष भी यहाँ पर आए हुए होंगे। और एक मुझे लगता है कि सत्र के समापन के साथ बहुत ही सार्थक जवाब लेकर यहाँ से वो जाएंगी, क्योंकि जब उलझनें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब तनाव ज्यादा बढ़ जाते हैं और महिलाएं इतनी सहनशील होती हैं कि वो उनके अंदर अपनों से ही द्वंद्व चलता रहता है, वो किसी से अपनी बात साझा करने से डरती हैं, घर में तनाव का माहौल होता है तो वो समझ नहीं पाती हैं, उनको लगता है कि उनको कोई नहीं समझता है। तो मैं सिर्फ उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि पहले खुद को खुश रखिए, आप और भी ज्यादा एनर्जी के साथ परिवार को खुश रख सकती हैं। और जब हम गाड़ी का स्टेयरिंग जो है किसी के हाथ में दे देते हैं और निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर चल पड़ते हैं, तो अपने जीवन का स्टेयरिंग अगर आप परमात्मा के हाथ में दे देंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि आपका जीवन का सफर कितना आसान हो जाएगा। और इसी सहनशीलता के साथ जो स्वर्णिम भारत की नींव रखने की बात हम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी दिशा में भी हम सार्थक तौर पर कदम उठा सकेंगे। आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, मैं सभी दीदी जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच तक आने का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूजा शर्मा जी, आपने अपने बहुत सुंदर अनुभव साझा किए और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समय प्रति समय जाकर आप जो अनुभव करती रही हैं उन अनुभवों को भी आपने हम सबके बीच साझा किया और हम सबको एक सुंदर महामंत्र दिया कि हम किसी चीज के लिए भी शिकायत ना करें। आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें सिखाया है कि आप अगर शुक्रिया करते हैं और आपके संस्कारों में अगर शुक्रिया करना समाहित हो गया है तो कभी भी जीवन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। इसलिए मैं सभी को कहती हूं, खुश रहना है तो आप रोज रात को सोने से पहले विटामिन टी की गोली खा के सोइए। और आपको पता है वो विटामिन टी की गोली कौन सी है? वो है रोज रात को सोने से पहले आप अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी प्राप्तियों के लिए परमात्मा का थैंक यू कीजिए। अगर आप रोज ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों का धन्यवाद करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करते हैं, अपनी प्राप्तियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो यकीन मानिए जो नहीं है वो भी आपको जीवन में प्राप्त होने लगेगा। ये है शुक्रिया की ताकत, ये है विटामिन टी टैबलेट की पावर जो आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आइए, अब वो समय आ चुका है जब हम सुनने जा रहे हैं आज के सेशन की चेयरपर्सन हमारी परम आदरणीय परम तपस्विनी राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, जिनको आपने पहले भी सुना है। आप ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। और दीदी जी, हम सब इस वक्त आपसे आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं कि इन 3 दिनों में जो कुछ भी इस परिसर में हम सभी ने सुना, दीदी हम सभी को ऐसा वरदान देंगी जो वो शिक्षाएं हमारे जीवन में धारणाओं में आ जाएं, हम उन शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएं, ऐसा वरदान दीदी जी हम सबको देंगी। और दीदी जी वो परमात्मा की रतन हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति का पंचम विदेश में लहराया है और आप सभी को भी उस संस्कृति से सुसज्जित रहने का वरदान हमारी आदरणीय दीदी जी देंगी। तो अब वो समय आ गया है दीदी के वरदानी बोलों को सुनने का। सब अपने मन के कपाट खोल लें और दीदी के वरदानों को इस ज्ञान मान सरोवर में इकट्ठा करके जाएं ताकि आप सबका जीवन स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। अब सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान अति सम्माननीय विदुषी, आपने उनका स्वयं के मुख से सुना है, प्रवचन सुना है, हाथ कंगन को आरसी क्या स्पष्ट जीवन किस प्रकार से बनाया है, सबका सम्मान करते हुए आप सब आत्माएं, मेरी बहनें और मेरे भाई, थोड़े हैं तो भी मेरे भाई, क्योंकि थोड़ों में भी बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, तो मैं सबका सम्मान करती हूं। आपने 2.5 घंटे से सुन ही रहे हैं कितना अपने में समा लिया है, समाने का लक्ष्य क्या है, स्वर्णिम भारत आखिर है क्या, सतयुगी दुनिया का नक्शा क्या है, हम उसके लिए तैयार हैं। इस संसार में रहते हुए 8 प्रकार का बंधन है, तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, समाज का बंधन और गवर्नमेंट का बंधन, और साथ साथ अपने कर्मों का बंधन, प्रकृति का बंधन। सतयुगी दुनिया को स्वतंत्र दुनिया कहा जाता है, भारत सोने की चिड़िया, भारत सुखधाम, भारत स्वर्ग, भारत परम भूमि, पवित्र भूमि, जहां परम पिता परमात्मा स्वयं आकर स्वर्ग की सृष्टि की स्थापना करते हैं, और स्थापना करने में सिर्फ शक्तियां नहीं, क्योंकि स्वर्ग की दुनिया में नर भी होंगे तो नारी भी होंगे, श्री लक्ष्मी नारायण हैं तो दोनों ही हैं, परंतु वो कैसे रहते हैं कंबाइंड, श्री विष्णु जी का रूप 2 हाथ श्री लक्ष्मी जी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं, और जब महालक्ष्मी जी को देखते हैं तो 4 हाथ हैं, तो 2 हाथ सामने श्री लक्ष्मी जी के और 2 हाथ पीछे नारायण के। एक मत है, एक धर्म है, एक राज है, एक भाषा है, और सारा भारत ही विश्व का श्री लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन कहलाते हैं, वो विश्व के मालिक रहे। जहां पर फिर तन का कोई रोग नहीं है, निरोगी कंचन काया है, कभी कोई बीमार नहीं होता, मन की कोई अशांति नहीं है, उनके मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने मन की शांति मांगते हैं। आप सोचिए, जहां श्री लक्ष्मी जी चैतन्य में रहती होंगी वहां धन की कोई कमी होगी, धन हीरे मोती महल सजे सजाए रहते हैं, पर वो बिल्डिंग मटेरियल है, जिस एक हीरे के पीछे आज मनुष्य कितना पाप करते हैं, जान ले लेते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, वहां वो हीरे बिल्डिंग मटेरियल है, पत्थर है। संपत्ति होते हुए भी कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है, लक्ष्मी और नारायण नर और नारी दोनों एक मत है, तो ये सृष्टि स्वर्ग है, और जब ये सब्जेक्ट तब आता है जब वहां स्वाभाविक एकता नहीं है। रावण के 10 सिर हैं, बुद्धि मंद है, मंदोदरी, तो जहां मत भेद है, रावण के राज को राक्षस राज कहा जाता है, दुख का राज कहा जाता है, बंधन का राज कहा जाता है, अत्याचार का राज कहा जाता है, जहां हर एक आत्मा रूपी सीता कैद में है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाती है, जब हर एक नारी कैद में आ जाती है, रावण की कैद में है, यानी मतभेद की कैद में है, या पुरुष मत प्रधान होने के कारण उसकी दासी बन गई है, अथवा अपना व्यक्तित्व नहीं रहा है तो कंपटीशन करना शुरू किया, डिमांड करना शुरू किया, रेवोल्यूशन करना शुरू किया। परंतु माताएं शिव शक्तियों का असली स्वरूप, दिव्य स्वरूप देवी का है, और उसमें भी देवी बनने में भी शीतला देवी, संतोषी देवी, जब भी शब्द आते हैं तो ये शब्द दैवी गुणों का प्रतीक है, संतुष्टता की मूर्ति है, शीतल स्वभाव वाली है, दुर्गा स्वरूप है, दुर्गणों का नाश करने वाली है, शेर की सवारी है, निर्भयता की मूर्ति है। नारी का स्वरूप पूजनीय मूर्त है, और जहां नारी पूजी जाती है इसका मतलब वहां देवताएं बसते हैं, यानी जहां दिव्यता रहती है वहां नारी पूजनीय मूर्त है, और जब नारी की दिव्यता खत्म हो जाती है तो पुजारी, भिखारी, दासी चरणों की धूल मानी जाती है, पैर की जुत्ती समझी जाती है। कहां था वो चरित्र और ऊंची स्टेज, अब किस लेवल पर पहुंच गए? हर एक अपने स्वरूप को ही भूल गया है, तो फिर से तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, धन का था, समाज की एकता, एक धर्म, एक राज, आयु मरने का वहां डर नहीं, आयु लंबी है क्योंकि स्वस्थ है, 150 साल से पहले शरीर नहीं छोड़ते। तो ऐसी ऐसा जीवन न केवल नारी परंतु नर का भी बने, क्यों कि नारी अकेली नारी नर के साथ है, तो नारी है घर है तो मंदिर है। तो आपने बहुत सारी बातें सुनी है, मैं अब ज्यादा एक एक ने हर एक बहुत सुंदर बात सुनाई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पर आपने अंडरलाइन जरूर किया होगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। तो तीन चार बातें सिर्फ आप रख लेंगे, एक तो अन्न का मन पर असर पड़ता है, तो अन्न तो आप रोज पकाते हैं ना, कोई मेहनत का काम नहीं है, खाना खाते भी हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन। जहां जहां मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, स्वच्छ है, तो वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। तो प्लीज रोज चेक करो कि आपने अपने मन में बहुत समय का किचरा तो नहीं रखा हुआ, कोई गंदगी तो नहीं रखी हुई है। जो भाई किसी ने कुछ कहा, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, शादी करके आए, सास ने कुछ बोला, नंद ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कुछ बोला, वो दुख का अंदर छाप लग गई, कितना समय हो गया, अरे बेकार की बात कही थी, फालतू बात थी, रबिश था। तो जो रबिश था वो मैंने अगर अपने मन के अंदर रख लिया, तो जहां इतने साल से, 20 साल, 30 साल, 15 साल से जिस मन में रबिश हो, वहां कीड़े मच्छर मकोड़े पैदा होंगे ना, वहां बीमारी होगी, वहां खुशी नहीं होगी। मन की और मन चिंतित रहेगा, निश्चिंत नहीं रहेगा। तो पहली बात है कि आप आत्मा हैं और आपकी पहली शक्ति मन है। आप लोगों ने कोर्स किया है सवेरे के समय 7 बजे जो आपका सेशन होता था, उसमें पहला सेशन यही है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो मैं नर हूं या नारी हूं, अगर अपने आत्मिक स्वरूप में आप स्थित हैं तो आप में स्वाभाविक रूप से शक्ति रूप बन जाएंगे, आप सिर्फ शक्ति बन के रहेंगे, ऑर्डिनरी वुमन नहीं। ऑर्डिनरी वुमन होते हुए भी आप विजडम ऑफ मैन हो, क्यों कि बच्चे को मत देने वाली माँ है, पहली शिक्षक माँ है। ये बातें तो आपने बहुत बारी सुनी है, बहुतों ने रिपीट की है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती वो बात। आपने सुना है समझदार, और सत्य कोई बात होती है तो जितने बार भी बोलेंगे वो सच सच होता है, सदा रहता है, वो बदलता नहीं है। तो जो सच्चाई है जो भी बोलेगा वही बोलेगा। तो मन की शुद्धि के लिए मन के संकल्पों को शुद्ध रखना है, मनसा देवी बनना है। मनसा देवी की पूजा होती है, यानी मनसा को दिव्य बनाना है तो मन के संकल्पों को चेक कीजिए। दूसरी शक्ति आप बुद्धि हैं। आपको मालूम समझ आ गया होगा कि मन अलग चीज है, वो आत्मा की शक्ति है, और हृदय अलग चीज है, दिल शरीर का पुर्जा है। मन आत्मा की शक्ति है, शरीर दिल का पुर्जा है। दिल जो है वो शरीर का एक ऑर्गन है, ब्रेन जिस्म का ऑर्गन है, और बुद्धि आत्मा की शक्ति है। तो आप बुद्धिमान, बुद्धि की देवी सरस्वती स्वरूप हैं, अपने इस दिव्य स्वरूप को याद रखिए। और आप सबकी शक्ति भरने वाली शिव शक्ति हैं, अनेकों की संस्कारों को परिवर्तन करके वरदान देने वाली, वरदाता हो, दाता हो, विधाता हो, वरदाता हो, भाग्य बनाने वाली भगवती हो। अपने स्वरूप को याद रखेंगे तो उसमें सिंपल बात यह है, इतना तो कर सकते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय प्रसाद बना रही हूं, बच्चे को ये अच्छा लगता है, हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, उसको किसी देहधारी को याद नहीं कीजिए। उस समय परमात्मा की याद में भगवान का भोग खिलाइए, और भगवान का भोग स्वच्छता से बनाइए, शुद्धि से बनाइए, प्यार से बनाइए। अगर आपने टेंशन में खाना बनाया है और बच्चे और हस्बैंड को टेंशन है, उनका दोष नहीं है, जैसा अन्न है वैसा मन है, मैंने उनको क्या खिलाया, टेंशन खिलाई तो टेंशन ही व्यवहार में आएगी। दुख से बनाया है, पीड़ा से बनाया है, प्रेशर से बनाया है, वो प्रेशर उनके पास जाएगा, क्योंकि हमारे मन के वाइब्रेशन भोजन में जाते हैं। इसलिए सिंपल बात आप कर सकते हैं, आप ज्योता वाली माता हैं, आपकी ज्योत सदा जगी रहे। ज्योत जगी है तो अंधेरा मिट जाता है। ज्योति वाली माता बनने के लिए आप अपनी तीनों शक्तियों को इकट्ठा रखें। ऐसे नहीं कि मन कुछ कहता है, समझ कुछ दूसरा कह रही है, और व्यवहार संस्कार कुछ और चल रहा है। दोष देने का संस्कार, दोष देखने का संस्कार ये दुखी करता है। तो मेरी मीठी बहनों, ना दुख दो ना दुख लो। यह आदत पड़ गई है दुख लेने की, और दुख लेते लेते इतना दुख ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जो उल्टी करेंगे ना हजम नहीं हो सकता। इतना ज्यादा दुख, सब सबसे दुख लेते ही रहे और इकट्ठा होता ही रहा, और वो भी पुराना दुख है तो ज्यादा ज्यादा तंग करता है अंदर। इसलिए दुख दो नहीं, ये तो ठीक बात है, पर आप शिव शक्ति हो, आपका हृदय मंदिर है, तो मन को मंदिर बनाओ। उसके लिए अपने अंदर जाओ, बाहर का रूप नहीं। बाहर का रूप मैं कितना भी सुंदर बना लूं, श्रृंगार कर लूं, कितना भी कोई विशेष वस्त्र आभूषण पहन लूं, आखिर वो मेटल है, वो प्रकृति की बनी हुई चीज है, वो परिवर्तन होती है, वो विनाशी होती है। पर मन के अंदर मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, तो मन के अंदर शुद्ध वातावरण बनाइए, मन को बनाइए मंदिर, घर को बनाइए आश्रम। आश्रम का मतलब वातावरण ठीक हो, एक मत हो। आपके घर में कुत्ता और बिल्ली एक ही जगह रहते हैं तो एक बॉल में पानी पीते हैं। मैं नेपाल में गई थी तो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर मैंने बहुत सुंदर नजारा देखा, बंदर भी थे और कुत्ते भी थे। तो कुत्ते के बैक पर बंदर बैठ करके कुत्ता उसको वो जो सवारी दे रहा है। पशुओं के अंदर भी मंदिर के वातावरण में विशेषता आ जाती है। तो आप तो दिव्य बुद्धिवान, इंसान तो बुद्धिवान है, समझ सकता है, पशु बुद्धि नहीं है, आप दिव्य बुद्धि हैं। तो आप घर को आश्रम बनाने के लिए बच्चों का एक का अवगुण दूसरे को नहीं सुनाइए, प्लीज कंपेयर नहीं कीजिए, ये तो देखो कितने अच्छा नंबर लेके आया है, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो फेल हो गए। इससे आपस में बच्चों के अंदर वैर विरोध पैदा हो जाएगा, कंपटीशन होगा। कभी भी कंपेयर नहीं कीजिए, उनकी कमी को समझाना है तो पहले उनकी विशेषता का दर्शन उनको दीजिए। तीसरी बात है, ये आपने पहले भी सुनी है कि कोई बात हो गई, अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए और दूसरे को भी माफ कीजिए, तो घर साफ रहेगा, वातावरण साफ रहेगा। मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आती है, न केवल माफ कर दिए परंतु माफ करके भूल जाइए कि मुझे मैंने माफ किया है। समय होता है तो छोटी सी कहानी है। एक बार एक महात्मा जी साधु तपस्या कर रहे थे, नदी झरने के किनारे बैठे थे, लोग भी वॉक करने गए थे, सुंदर सीन था, झरने के किनारे बैठे थे, मौज मना रहे थे, आनंद ले रहे थे प्रकृति का। महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने जब देखा कि एक बिच्छू अचानक उनका ध्यान गया, बिच्छू पानी में गिर गया, उन्होंने बिच्छू को उठाया, निकाला। नेचुरली बात है, बिच्छू तो काट लेगा, बिच्छू डंग मारेगा जरूर, उसका स्वभाव है। महात्मा जी चुपचाप उठे, पास के जंगल झाड़ियों में गए। उनको मालूम था कि जड़ी बूटी कौन सी है जिससे पेन खत्म हो जाता है और ये डंक निकल जाता है बिच्छू का। उन्होंने बिच्छू का डंक निकाल दिया और अपने आप में वो रग पत्तियां जो जड़ी बूटी थी वो रगड़ी, आराम से आके फिर बैठ गए। इतने में बिच्छू फिर से क्रोल करता हुआ फिर नदी में, फिर पानी में गिरा। तीन बारी ऐसा हुआ। लोगों ने कहा, महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, आप तो समझदार हो, बिच्छू को मार क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा, नहीं ये मेरा टीचर है, मैं इसको मार नहीं सकता। उन्होंने कहा, तुम्हारा टीचर है, तुम बिच्छू की भाषा को जानते हो क्या, बिच्छू ने तुम्हें कैसे पढ़ाया। महात्मा जी ने कहा कि पढ़ाने की बात नहीं है, सिखाने की बात नहीं है, जब हम स्वमान में रहते हैं तो सीखने की बात होती है। जिसको जो स्वमान में रहता है उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो सीख जाता है। प्रैक्टिकल में व्यवहार से संस्कार से दूसरे के सीख जाता है। तो मैंने तीन लेसन सीखे हैं। लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने कहा, तीन लेसन कौन से सीखे हैं, प्लीज बताओ। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि पहला लेसन तो मैंने ये सीखा कि बिच्छू ने मेरे, बिच्छू का स्वभाव तो काटना है मुझे ये जानकारी हुई, अंदर से जागृति आई कि मेरा संस्कार दया भाव का और बचाने का इतना नेचुरल हो गया है कि मुझे ये भी नहीं ध्यान रहा कि बिच्छू तो तैर जाएगा, अपना रास्ता अपना बना लेगा। पर मेरा संस्कार दूसरे का उद्धार करने का, वो पशु है या पक्षी है या जीव जंतु है, तो मेरे हृदय की दया भावना किस लेवल पर पहुंची है, ये मुझे अपना दर्शन हुआ। मुझे अपने स्वमान की जागृति हुई कि मैं अभी सत मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाला हूँ, तो कोई भी है कल्याण करने में मेरे पास भेदभाव नहीं रहा, तो मेरी स्वमान की जागृति हुई। का दूसरा लेसन क्या सीखा? उन्होंने कहा दूसरा लेसन ये सीखा कि अपकारी पर उपकार करो, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, बुरे के साथ बुरा किया अच्छे के साथ अच्छा किया तो व्यापार किया आपने, प्यार नहीं किया, उपकार नहीं किया। तो मेरे को ऑटोमेटिकली बिच्छू को मैं मारूं क्यों, मैंने अपना बचाव किया, परंतु बिच्छू को मारना नहीं, उसका उपकार किया। तीसरी लेसन कौन सा सब सीखा? क्षमा करके, दूसरा लेसन है क्षमा कर दिया, उपकार किया। तीसरा लेसन क्या सीखा? तीसरा लेसन सीखा कि माफ करके भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। उन्होंने कहा महात्मा जी फॉरगिव करना तो पॉसिबल है पर फॉरगेट करना पॉसिबल नहीं है, जो दुख मिला वो भूलेगा कैसे, वो पॉसिबल नहीं है। महात्मा जी ने कहा नहीं, यही लेसन मैंने सीखा है, फॉरगिव करके फॉरगेट करो, अगर फॉरगेट नहीं किया है तो अहंकार अभी भी है। पर उन्होंने कहा महात्मा जी पर भूलता ही नहीं है ना, सीक्रेट क्या है भूलने का? महात्मा जी ने कहा सीक्रेट ये है कि मैं फौरन गया और मैंने वो जो डंक लगा था, जो मेरे को पेन था, उस पेन को मैंने निकाल के और मुझे समझ आ गई, मुझे ज्ञान था कि मुझे अपने आप को पेन में नहीं रखना है। तो अगर ये स्मृति आ गई कि दुख मेरा संसार नहीं है, मेरा संसार सुखमय संसार है, मैंने सीखा कि दुख में रहते भी दुख को निवारण करने का कारण निकालना चाहिए। कारण क्या है? जब समझ गया उसका स्वभाव है और मुझे समझ में आ गया कि मेरा स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव क्षमा करने का है, उसमें दया भाव रख करके मैं दया कर सका, क्षमा कर सका, ये खुशी मुझे दुख को भुला दिया। अगर आपको आपने कुछ लेसन सीख लिया है, विशेष करके दुख की परिस्थिति में आपने कोई अच्छा लेसन सीख लिया है, तो दुख की घटना भूल जाती है, किसी का बुरा व्यवहार भूल जाता है। तो इसीलिए अपने आप से सीखना है कि मेरे अंदर क्षमा करने का संस्कार हो, तो देवियों के सामने जाके क्षमा मांगते हैं। हम तो चैतन्य देवी स्वरूप, माँ बाप चाहते हैं बच्चे देवी बने, देवता बने, हम भी चाहते हैं, विश्व भी चाहता है। तो सतयुग में हर एक नर नारी देवता है, डबल ताजधारी है, लाइट का ताज भी है तो पवित्रता का ताज भी है। तो क्षमा करने का आधार है हृदय की शुद्धि और जीवन की पवित्रता। हृदय की शुद्धि, वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, व्यवहार पवित्र, संस्कार पवित्र, तो संसार पवित्र है। तो स्वर्ग का संसार, स्वर्णमय संसार बनाना है तो हमको अपने संस्कार इतने पवित्र बनाने हैं, जो हमारी वृत्ति भी पवित्र हो, हमारी दृष्टि भी पवित्र हो, हमारा हृदय भी पवित्र हो, हमारा व्यवहार भी पवित्र हो। और वो पवित्र आत्मा ही न केवल माननीय है, वो देवियां पूजनीय मूर्त है। वो अपकार, वो निंदा करने वाली नहीं, उन देवियों की पूजा होती है, जड़ मूर्ति की पूजा होती है। एक मंदिर में बड़ा मंदिर बनाते हैं, एक मूर्ति को महल मिल जाता है, बाकी बेचारे कोई झुक्की झोपड़ी में एक कमरे में 15 लोग रहते हैं, और वहाँ एक देवी का इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा आंगन, और जड़ मूर्ति को सोने के वस्त्र पहनाए, सुंदर गहने पहनाए हैं, वस्त्र पहनाए हैं, पवित्र भोजन खिलाया है। वो जब आपने अपना जीवन ऐसा बनाया है, जब चैतन्य बनाया है, तो वो जड़ यादगार है, तो आप चैतन्य देवियां हैं, चैतन्य चरित्र हैं, सबकी चित्त को शांति देने वाले हैं। तो हृदय को शुद्ध, चित्त को शांत बनाए, बुद्धि को दिव्य बनाए, संस्कारों को सत्व प्रधान बनाए, तो आप अभी ही पूजनीय मूर्त। जैसे अनेक इनाम लिए, अनेक टाइटल मिले, फिर वो होगा श्री लक्ष्मी, दुर्गा स्वरूप दुर्गुणों को नाश करने वाली। और जब लक्ष्मी बन गए तो कोई हथियार नहीं है, लक्ष्मी जी का हाथ, चारों हाथ बैलेंस वाले हैं, न स्वदर्शन चक्र है, न शंख है, न गदा कमल, कुछ नहीं है। वो अलंकार भी जीवन का सुधार के लिए है, वो टाइम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। दुर्गा के हाथ 8 हाथ क्यों हैं, 8 अलंकार क्यों हैं, गायत्री जी की महिमा क्या है, वो सब आप हैं, अभी टाइम नहीं है बताने का। पर इतना बताओ, जब नारी लक्ष्मी बन गई तो लक्ष्मी जी के पास कोई हथियार नहीं है, बैलेंस लाइफ है, 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे, परमात्मा से मिला है और स्वाभाविक सबको दे रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा से लेने के अधिकारी बनो, पिता से लेने के अधिकारी बनो, भिखारी नहीं बनो, और दाती बन के रहो, भगवती भाग्य बनाने वाली बन के रहो। तो ऐसी भगवतियों को, ऐसी लक्ष्मी स्वरूप को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। जाते जाते दीदी ने हम सभी को ये संदेश दिया है, नारी तू कल्याणी बन, विश्व कल्याण के लिए वरदानी बन, बनाकर मन को मंदिर, घर को आश्रम, स्वर्णिम भारत का आधार बन, स्वर्णिम भारत का आधार बन। यही हमारी दीदी जी की शुभ प्रेरणाएं सभी के प्रति रही। अब वो समय आ गया है जब हम सभी उस राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिसके विषय में आप लगातार 3 दिनों से सुन रहे हैं, जहां शील दीदी से शुरू हुआ था स्वर्णिम भारत के ज्ञान का आगाज। अब शीला दीदी बताने आ रही हैं स्वर्णिम भारत बनाने में राजयोग का योगदान। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय शीला दीदी जी से। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर वुमेन विंग मुंबई हैं, पिछले आदरणीय सुदेश दीदी जी हम सब के बीच से प्रस्थान कर रही हैं। हम सब खड़े होकर के एक बार दीदी जी का जोरदार तालियों के साथ बहुत 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 धन्यवाद करें, और इसके पश्चात हमारे बीच आ रही हैं शीला दीदी जी, जो हम सभी को मेडिटेशन कराएंगी। आप पिछले 50 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, महिला प्रभाग की सक्रिय सदस्य हैं, और शीला दीदी जी को नवी मुंबई भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हिम्मत और उमंग उत्साह में रहना, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। कुशल प्रशासन और आध्यात्मिक बल द्वारा मुंबई महानगरी में आप करा रही स्वयं की और परमात्मा की पहचान है।
ऐसी कुशल प्रशासिका, कुशल वक्ता, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, हिम्मत और उमंग उत्साह से जीवन को आगे बढ़ाने वाली आदरणीय दीदी जी हम सबके समक्ष हैं, जो हम सबको मेडिटेशन कराएंगी, आदरणीय शीला दीदी।
ओम शांति। हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आप 3 घंटे से सुन रहे हैं। तो राजयोग जो है वह एक संजीवनी बूटी है, तो हम चंद घड़ी में अनुभव करेंगे कि कैसे हम ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करें। तो चलिए हम सभी सीधा बैठेंगे और मन में जो मैं संकल्प आपको दे रही हूँ, आप वो मन ही मन में बोलेंगे। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, शांति मेरे गले का हार है, शांति के सागर मेरे आत्मा के पिता परमात्मा है, परमात्मा शांति के सागर, शक्ति के सागर, उस सागर के सामने मैं विराजमान हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा की सर्व शक्तियों की लहरें उमड़ रही है। मैं आत्मा प्यारे परमात्मा से शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दया की शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। ओहो, मैं कितनी आत्मा शक्तिशाली सशक्त बन गई हूँ। अब मेरे अंदर सदैव मैं अपने आप को शांत स्वरूप रखूंगी, क्रोध को समाप्त कर सर्व को सम्मान दूंगी। हे प्यारे भगवान, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आपकी हूँ, आपकी ही मेरे ऊपर सदैव छत्र छाया है। ओम शांति। इस तरह हम हर घंटे में मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन करें और अपने आप को सशक्त महिला बनाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शीला दीदी जी, आपने बहुत कम समय में हम सभी को जो योग की अनुभूति कराई, आपने अनुभव किया होगा कि जब 2 मिनट और 3 मिनट के साइलेंस से और एक सुंदर योग अभ्यास से हम इतनी मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना हम रोज अगर इस योग का अभ्यास करें तो हमारे मन की बैटरी चार्ज होगी। जब अपने मोबाइल को हम चार्ज करते हैं और उसका इतना ध्यान रखते हैं, तो उतना ही जरूरी है अपने मन को चार्ज रखना, और यही मेडिटेशन है। तो आप सभी सेशन में उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऑडियंस में बैठे हैं और इतनी धैर्यता से आप 3 घंटे तक हमारे समक्ष उपस्थित रहे, कितना हम आपका धन्यवाद करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि आप नहीं होते तो ये महफिल अधूरी रह जाती। अब हम इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं। मैं अनाउंस करने जा रही हूँ कि कल सुबह 4 बजे अमृत वेला पुनः आप सभी को इस हॉल में उपस्थित होना है, और उसके पश्चात जो आपके राजयोग शिविर का सत्र है 7:45 बजे, उस शिविर के सत्र में भी आप जरूर उपस्थित होंगे। ये हमारा अनुरोध है एक बार फिर से मंचासीन अतिथियों का और सभा में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।